ओम शांति। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य वक्ताओं से अनुरोध करती हूँ, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर कुंजनाचार्य जी, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा जी, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रदर अजय भारद्वाज जी, आपसे भी नम्र अनुरोध है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। सिस्टर ललिता शेरावत जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सिस्टर बी के उर्मिला जी, आपसे भी अनुरोध है आप आकर स्थान ग्रहण करें। ब्रदर सरवण कुमार दियोर जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रदर ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी से भी अनुरोध है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर सरह नरसिंह जी, आपसे भी अनुरोध है आप आकर स्थान ग्रहण करें। ब्रदर तुषार प्रभु जी से अनुरोध है कि आप भी आकर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर मीनांती बिहन जी से भी अनुरोध है कि आप भी आकर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भ्राता ब्रिजमन भाई जी से भी अनुरोध है आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। भाई साहब पहुंच गए। सब वक्ताओं से नमन अनुरोध है कि आप सब मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम दो मिनट ईश्वर पिता की याद में बैठकर आज के प्लेनरी सेशन को आरंभ करेंगे। दो मिनट ईश्वर पिता की याद में।
सागर शांति का संसार रचाने आया, शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया, भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला, हर आत्मा पुण्य हुई जब पिया अमृत प्याला। शिव ने शांति भरा कलश, शिव ने शांति भरा कलश, ब्रह्मा मुख से छलकाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आब पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया।
ओम शांति। कार्यक्रम के आरंभ से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, आज की मंचा सीन हमारे मुख्य वक्ताओं का पुष्पगुच्छों, बैजेस और पगड़ी से सम्मान करने ब्रह्मा कुमारी बहनों से। जब सम्मान होता है तो मंच सीन के साथ साथ हम सबका भी सम्मान होता है। सुंदर विश्व लेकर आज सब हम एकत्रित हुए हैं वैश्विक सद्भाव के लिए शांति की पत्रकारिता। अभी हम सब सुन रहे थे शांति की शक्ति से शांति का राज्य स्थापन करने के लिए हम आबू की धरती पर पधारे हैं। शांति का सागर बाप शिव पिता, हम सब आत्माओं का पिता, जो शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए हमें प्रेरणाएं देता है। भारत भूमि जो शांति की दुनिया मानी जाती थी और वास्तविकता यही है शांति की दुनिया थी, वो भारत देवों की भूमि जहां देवी देवताओं का राज्य राम राज्य शांति की दुनिया था, वो शांति की दुनिया में देवी देवताओं की धरती पर शांति का साम्राज्य था। आज उस शांति की दुनिया में कहां वो अशांति के कुछ हस्तक्षेप में आकर के वो शांति कहीं खो गई है। उस शांति की दुनिया में हमारी पत्रकारिता, क्या मददगार कर सकती है उस सद्भावना के द्वारा मीडिया पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा क्या सहयोग देकर के हम इस शांति के साम्राज्य को स्थापन करने में प्रेरणाएं दे सकते हैं, उसी विषय को लेकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं बुलाने जा रही हूँ आज के हमारे कीनोट स्पीच के लिए डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, एचओडी डिपार्टमेंट, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जोधपुर से उदयपुर से पधारिए हैं। आपसे अनुरोध है आप के कीनोट स्पीच के लिए डॉक्टर कुंजन आचार्य जी।
ओम शांति। आज की इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में देश भर के पधारे हुए मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरे दिन का यह दूसरा सत्र है और हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्र हुए हैं जो आमतौर पर बहुत अछूता रहता है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी इसकी धरती शांति की उपासक है। इनका ध्येय वाक्य ओम शांति है। हम लोग ओम शांति से ही संबोधन करते हैं और ओम शांति से ही बातचीत की समापन करते हैं। हम लोग पत्रकारिता में काम करने के दौरान, पढ़ाने के दौरान और तमाम तरह के शोध कार्य करने के दौरान हमने युद्ध पत्रकारिता की बातचीत तो बहुत सुनी है और देखी भी होगी, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो करिकुलम में पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है और बताई जाती है। लेकिन आज के इस सत्र की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई है उसका विषय रखा गया है शांति पत्रकारिता। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शांति पत्रकारिता शब्द पहले सुना है, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत अल्पमत में है, क्योंकि ऐसा विषय है जिसके बारे में सुना नहीं गया, क्योंकि कहा नहीं गया इसलिए सुना भी नहीं गया, इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि बताया नहीं गया। अगर शांति पत्रकारिता विषय समझाया गया होता युद्ध पत्रकारिता की तरह, तो हम लोग आज इस विषय पर सामूहिक रूप से बातचीत करने के लिए एकत्र ना होते, हम युद्ध पत्रकारिता की बात कर रहे होते। आमतौर पे जितनी तरह की रिपोर्टिंग होती है, पत्रकारिता के पेशे में आप सब लोग हैं, उसमें युद्ध पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि युद्ध के भीतर रिपोर्टिंग करनी होती है, पता नहीं कब कहां से बम गिर जाए। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो एक पत्रकार बहुत फेमस हुए जिन्होंने अपनी मृत्यु की खबर दी थी, क्योंकि वो बहुत जख्मी घायल हो गए थे, उन्होंने अपनी खबर भेज के मृत्यु का एक आंकड़ा जोड़ के भेजा था। हम यही पढ़ते लिखते बड़े हुए, हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि युद्ध का विकल्प भी हो सकता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में हम क्या सीखते हैं, जो जैसा है उसको दिखाया जाए, जैसा तथ्य है उसको बताया जाए, या फिर हम ऐसा कहते हैं जैसा देखा वैसा लिखा। शांति पत्रकारिता तो देख के लिखने जैसा नहीं है, शांति पत्रकारिता विकल्प की पत्रकारिता है, और विकल्प की पत्रकारिता करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, क्योंकि एक धारा के खिलाफ काम करती है। नार्वे के एक पत्रकार रहे हैं, समाजशास्त्री थे, बाद में पत्रकारिता भी की उन्होंने, जोहान गर्टुंग, उन्होंने इस शब्द की संकल्पना प्रतिपादित की और कहा कि शांति पत्रकारिता एक ऐसा ध्येय वाक्य हो सकता है जो दुनिया भर में युद्ध की विभीषिका को दूर करके शांति की स्थापना कर सकता है। लेकिन इसके लिए साहस की जरूरत होती है, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि युद्ध की पत्रकारिता संघर्ष की पत्रकारिता है, और संघर्ष की पत्रकारिता में जितना संघर्ष गोली का है, टैंक का है, तोप का है, उतना शांति की चिड़िया उड़ाने का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए साहस की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करूंगा कि जब पहली बार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में एक युद्धाभ्यास किया। उस समय सबसे पहले 1970 की बात होगी, एक बड़े समूह ने युद्ध के विरोध में प्रदर्शन करने की घोषणा की और युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन को सर्वाधिक चैनल्स ने दिखाया, अखबारों ने भी छापा। और जो युद्धाभ्यास की जो घोषणा की गई थी उस खबर का बहिष्कार किया गया। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर खींची और ये एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि युद्ध की पत्रकारिता की रिपोर्टिंग करते करते क्या कभी हम शांति की बात भी कर सकते हैं। हाँ, की जा सकती है शांति की बात भी, लेकिन कैसे? आप और हम जिस दौर में जी रहे हैं वो चिल्लाहट का दौर है। चैनल पर देखेंगे तो कौन जितना जोर से चिल्ला रहा है उसकी खबर ज्यादा ढंग से दिखेगी। पहले हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए न्यूज फॉर नॉइज, अब हो गया न्यूज फॉर नॉइस। तो चिल्लाहट के दौर में अगर हम शांति की कल्पना करते हैं तो सीधा आघात हमारी व्यावसायिकता पर होता है। मैं पिछले साल भर से देख रहा हूं, आप लोग भी देखते होंगे, एक बड़ा नेशनल चैनल है, वो दिन भर युद्ध परोसता है, दिन भर, मतलब हर क्षण। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो न जाने वो सब कुछ दिखा दिया जो न था। और अभी भी हर रोज शाम को प्राइम टाइम में 2 घंटा केवल यही दिखाता है कि कहां क्या युद्ध होने वाला है, युद्ध की संभावनाएं क्या है, कौन युद्ध की तैयारी कर रहा है, कितने टैंक सज गए हैं, कौन राष्ट्राध्यक्ष किस राष्ट्राध्यक्ष के साथ में बहस कर रहा है। यानी वो खबर दिखाकर हमें प्रवोक कर रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पत्रकारिता का दौर युद्ध की पत्रकारिता का जमीन तैयार करने वाला है। लेकिन हमारी बात इससे थोड़ी आगे है। युद्ध की विभीषिकाएं हमने देखी हैं, चाहे वियतनाम का युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, इराक का युद्ध हो, या अभी फिलहाल जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, युद्ध की विभीषिका मानवता के खिलाफ है, मानवता को नष्ट करने वाली है। उदासी, भय और वो तमाम तरह की चीजें जो हमारे समाज में अस्वीकार्य है उसको बढ़ाने वाली होती है। लेकिन शांति पत्रकारिता की बात करेंगे कैसे? हम और आप लोग इकट्ठा तो हुए हैं, इस बातचीत को करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं बहुत साहस की जरूरत होती है। इस सभा में कितने स्ट्रिंगर्स हैं बताएंगे? स्ट्रिंगर्स कितने लोग हैं? पूर्णकालिक पत्रकार कितने लोग हैं? ठीक है, आप लोग अंशकालीन और पूर्णकालीन पत्रकारिता के दौर में जानते होंगे कि पत्रकारिता चलाई कैसे जाए। चैनल चलाना और अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। जिसे पहले कहा जाता था तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जेब में पैसा हो तो अखबार निकालो या चैनल चलाओ। तो चैनल चलेगा कैसे? शुक्रिया। चैनल चलेगा कैसे? विज्ञापन आएगा तब चलेगा। विज्ञापन कहां से आएगा? विज्ञापन आएगा रेटिंग से। रेटिंग कहां से आएगी? जब मैं चिल्लाऊंगा, मैं ऐसी कोई चीज पेश करूंगा जो आपके नजरों को, आपके कान को या आपके मन को, जहन को अटैक करती हो। जिस चैनल का मैंने जिक्र किया वो हर समय शायद युद्ध इसीलिए परोसता है शायद रेटिंग आ जाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ नहीं हूं कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं, बल्कि मैं इसलिए भी खिलाफ हूं कि 24 घंटे एक तरह का कंटेंट दिखाकर आप अपने दर्शकों को आकर्षित नहीं कर सकते। आपको ऐसा कंटेंट दिखाना होगा जो विकल्प की पत्रकारिता करता हो, कुछ नया दिखाना होगा। और शायद इसीलिए ब्रह्म कुमारी ने साहस किया है। मैं शांतनु भाई का साधुवाद करता हूं जिन्होंने मुझे कहा इस सेशन का नाम हमने शांति पत्रकारिता रखा है। शांतनु भाई के लिए ताली बजाएं। शांति पत्रकारिता न करिकुलम में है, न पाठ्यक्रम में है, न चर्चा में है। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि 25-30 वर्षों की पत्रकारिता में इस शब्द पे मैं पहली बार बोल रहा हूं। ना आपने सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन हाँ, आज इतने लोग इस विषय पर चर्चा करने के इकट्ठे हुए हैं। दुनिया में डिजिटल दौर आ गया है। पहले ऐसा था कि आपके अखबार का सर्कुलेशन कितना है, इससे होता था कि आप कितने बड़े पत्रकार हैं, कितने लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, या कि कंटेंट के लेवल पर कितने बड़े चैनल की रिच कितने लोगों तक है। और अभी तो डिजिटल का दौर है, आपकी अंगुलियां घंटों, या मैं घंटों तो क्या कहूं, किलोमीटर, आपकी अंगुली कितनी किलोमीटर रोजाना चलती होगी आपको खुद को नहीं पता। शायद नींद में भी चलती हो, शायद जागते भी चलती हो, शायद बोरियत दूर करने के लिए भी चलती हो। लेकिन इंटरनेट ने पूरी दुनिया का खाका बदल दिया है, या यूं कहें कि हमारे विचारों का खाका भी बदल दिया है, सोचने समझने की ताकत को भी बदल दिया है। इंटरनेट जितनी सुविधा आपको दे रहा है उतना ही क्रूर व्यावसायिक साधन है जो सबसे बड़ी व्यावसायिकता की बात करता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शांति पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ चैनल्स या अखबार की बात न करें, उस डिजिटल मीडिया की बात करें जो वैकल्पिक तौर पर सबसे मजबूत तौर पर हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। तो आप और हम क्या कर सकते हैं शांति पत्रकारिता को जीवित करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, शांति पत्रकारिता कोई शब्द नहीं है जिसको लेकर हम केवल बात करने के लिए बात इकट्ठा हुए हैं। शांति पत्रकारिता, हम जिस युद्ध को रिपोर्ट कर रहे हैं उस युद्ध के खिलाफ शांति कैसे हो सकती है इसकी बात न करते हुए शांति का समाधान कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं इसका साहस करना होगा। जब संपादक और पत्रकार किसी खबर के लिए समाधान प्रस्तुत करता है तो उसकी तरफ संशय भरी दृष्टि से देखा जाता है। अभी देश में कितने हिंसा हुए, कई जगह धार्मिक उन्माद हुआ, कई जगह मॉब लिंचिंग हुई, कई छुटकर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई जहां पर हमने जैसा देखा वैसा प्रस्तुत कर दिया। क्या किसी अखबार ने, पत्रकारिता ने या किसी पत्रकारिता संस्थान ने ये कहने की कोशिश की कि ये जो हुआ है इसको रोका जाए, ये रोका कैसे जा सकता है? इस पर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मामला होगा युद्ध को रोकने का और शांति स्थापित करने का। शांति पत्रकारिता कोई एक शब्द नहीं है, शांति पत्रकारिता समाधान प्रस्तुत करने का एक विचार है और दो चीजें, संतुलन कायम करने का। आप युद्ध को भी रिपोर्ट कीजिए, पत्रकारिता के पेशे को झुठलाना भी नहीं है, युद्ध हुआ है तो दिखाना ही पड़ेगा, हमारा पेशा है, लेकिन साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि शांति बेहद जरूरी है, न सिर्फ समाज में बल्कि मन में भी, और हम लोग इसी मन की शांति के लिए एकत्र हुए हैं। जीवन में शांति जितनी जरूरी है उतना युद्ध जरूरी नहीं है, और जितने युद्ध लड़े गए हैं वो तमाम युद्ध इसलिए लड़े गए हैं ताकि वर्चस्व स्थापित हो सके। संघर्ष की राजनीति उदासी की मनोभाव पर, उदासी की मानसिकता पर जाकर समाप्त होता है। ऐसे में हम और आपका दायित्व तो बढ़ जाता है, हमें सोचना होगा कि शांति पत्रकारिता का कायम करने के लिए किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा 2009 का, इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध तो आप जानते हैं बरसों से हो रहा है, बरसों से छद्म युद्ध भी हो रहा है और प्रत्यक्ष युद्ध भी हो रहा है। लेकिन 2009 में जब पहली बार इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अमेरिका की मध्यस्थता से चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, उस समय पूरे विश्व के मीडिया ने सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर कंसंट्रेट नहीं किया बल्कि उन्होंने उन घोषणाओं पर कंसंट्रेट किया कि इससे शांति स्थापित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह, वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के कई अखबार, जापान के कई अखबार, उन्होंने उस चीज का बहिष्कार किया जिसमें यह तय किया गया कि युद्ध रुकने में मुश्किल है या युद्ध रुका नहीं जा सकेगा इन इन विचारों से। तो जिन विचारों से युद्ध हो रहा था उन विचारों का बायकॉट कर दिया, उसको अखबारों में लाया नहीं गया, उसको टेलीविजन में लाया नहीं गया। यानी वे चीजें रिपोर्ट की गई जिससे शांति स्थापित हो, यानी विकल्प की पत्रकारिता प्रस्तुत की गई। ये बहुत बड़ा मामला था, संघर्ष को रोकने का समाधान प्रस्तुत करने का रास्ता था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पूरे विश्व में चर्चा हो रही कि युद्ध क्यों थोपा गया, बजाय इसके ये चर्चा करने की कितने लोग मरे, बजाय इसके कि रूस ने कितने लोगों पर कब्जा कर लिया, विश्व के मीडिया ने यह चर्चा करने की कोशिश की कि युद्ध क्यों थोपा गया, युद्ध की जरूरत क्यों हुई। और शायद मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विचार था जो हम और आप भारतीय पत्रकारों को भी सोचना होगा। विश्व की पत्रकारिता में तो बरसों से चल रहा है, कई सारे लोग इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन हम और आप पारंपरिक मीडिया के प्रतिनिधि हैं और पारंपरिक मीडिया में जो सबसे बड़ा भय है वो ये है कि हम अगर अलग करेंगे तो हमें अलग थलग समझा जाएगा, हम अगर अलग करेंगे तो हमारे विज्ञापन दाता प्रभावित होंगे, हम अगर अलग करेंगे तो हमारी व्यावसायिकता प्रभावित होगी। अगर पत्रकारिता में अलग करने का साहस नहीं है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता करना व्यर्थ है। अगर आप असली और सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं तो अलग करने का साहस कीजिए, कुछ भिन्न करने का साहस कीजिए, और मुझे लगता है शांति स्थापित करने से बड़ा साहस कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि खबरों का बायकॉट करके हम एक तरह के एजेंडे को नेस्तनाभूत कर सकते हैं, ऐसे एजेंडे को जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर चलता हो, ऐसे एजेंडे को जो सिर्फ विज्ञापनों के बल पर चलता हो। शांति स्थापित करने के लिए हमें उन चीजों को सोचना होगा जो वैकल्पिक पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करती हो। भारत में दो अखबारों ने साहस किया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस। पिछले एक दशक में मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साहस किया, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। साहस करना भी बड़ी बात होती है। कुछ कुछ आलेखों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि शांति पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं दैनिक भास्कर का भी उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने नो नेगेटिव मंडे करके एक अभियान शुरू किया, उसमें कोई नेगेटिव खबरों का स्थान नहीं। हर सोमवार आप देखेंगे प्रथम पोस्ट पर कोई नेगेटिव खबर नहीं। युद्ध भी नेगेटिविटी है, क्या जरूरी है कि एक दुर्घटना हो गई वही नेगेटिविटी हो? क्या यह जरूरी है कि किसी एक दो समूह में झगड़ा हो गया वही नेगेटिविटी है? आप मान के चलिए अगर दो व्यक्तिगत समूह में झगड़ा हो रहा है एक छोटे युद्ध का नमूना है, एक दो राष्ट्रों में झगड़ा हो रहा है तो बड़े युद्ध का नमूना है। अगर हम छोटे युद्ध को बहिष्कार करते हैं, छोटे युद्ध की खबर उतनी छापते हैं जितनी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो भी उस स्थिति तक पहुंचेगा कि हमें उस खबर पर ध्यान नहीं देना है। हम और आप कंटेंट फीडर हैं, हम जो देते हैं वो समझा जाता है, उससे एजेंडा सेट होता है, मानसिकता भी सेट होती है। अगर हम जो फीड करेंगे अगर नेगेटिव फीड करेंगे तो हमारा पाठक और हमारा जो दर्शक है वो नेगेटिव फीडिंग को एक्सेप्ट करेगा और वैसा ही सोचेगा। लेकिन कल्पना कीजिए हम पॉजिटिव फीड करें तो हो सकता है कि एक समय के बाद में इस साहस को पूजनीय दृष्टि से देखा जाए। आज के दौर में कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आज के दौर में वही बादशाह है जो कंटेंट मजबूती से परोस पा रहा है। आप और सब लोग पत्रकार लोग जो डिजिटल मीडिया भी कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया कितने लोग हैं इसमें बताएंगे? डिजिटल मीडिया कितने लोग हैं? कम लोग हैं डिजिटल मीडिया वाले, मुझे लगा कि ज्यादा होंगे। आजकल तो यूट्यूब चैनल चलाकर आप अपनी पत्रकारिता को एक नई दिशा दे सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो शांति पत्रकारिता की अवधारणा है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। उसमें तो कोई खर्चा नहीं आ रहा है, आप खुद एंकर हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद प्रेजेंटर हैं, खुद कंटेंट क्रिएटर हैं। तो कंटेंट की लड़ाई में विज्ञापन और रेटिंग को थोड़ा पीछे रखकर, थोड़ा समाज को आगे रखकर देखना होगा और समझना होगा। मोजो का दौर है, मोजो मोबाइल जर्नलिज्म। अब बड़े बड़े कैमरों की जरूरत नहीं है, अब बड़े बड़े स्टूडियोज की जरूरत नहीं है। अब तो तकनीकी तौर पर सस्ते उपकरणों से हम वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जो हमारी जेब में है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल को देखने की जरूरत नहीं है। कंटेंट भी आपके जेब में है और जो क्रिएट हुआ है वो भी आपकी जेब में है। जो कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं मोबाइल के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो हमारी जेब में है। जेब में यानी अब जब चाहें देखें, जब चाहें समझें, जब चाहें प्रतिक्रिया भी दें। इतना बड़ा खुला मंच है। हम और आपने जो पत्रकारिता शुरुआत की, अखबार पढ़ने के बाद हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तो आप यूट्यूब चैनल देखते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। कह सकते हैं भाई इस न्यूज को बंद करो, ये मत दिखाओ, वो दिखाओ। शांति पत्रकारिता की अवधारणा तब सार्थक हो सकती है जब आप और मैं और आप सब लोग अगर हर नेगेटिव खबर प्रतिक्रिया देना शुरू करें। आपको लगता है कि इस खबर का मुद्दा बदलना है, इस खबर का चेहरा बदलना है, तो प्रतिक्रिया देना शुरू कीजिए। हम और आप चुप हैं इसलिए एजेंडा सेट हो रहा है, हम और आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, शायद इसलिए वे तमाम तरह की नेगेटिविटी हर तरफ दिखाई पड़ती है जो नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर हम स्थिति को संभाल नहीं सकते तो उसे बिगाड़ने से रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। पत्रकार ये तो कर सकता है, अगर ऐसा कर सकता है तो मुझे लगता है कि शांति पत्रकारिता की अवधारणा सार्थक साबित होगी। पिछले दो बरस हमारे बहुत नकारात्मकता में गुजरे, यहां भी कोई सम्मेलन नहीं हुआ, हम कोरोना के दौर में थे, पूरा विश्व भयग्रस्त था। 18वीं सदी में जब यूरोप में जब जब महामारी आई तब पत्रकारों ने युद्ध की तरह ही महामारी के भीतर जाके रिपोर्ट की। मैं महामारी को भी एक युद्ध का नमूना पेश करता हूं, मैं महामारी को भी युद्ध की दृष्टि से देखता हूं। अभी इस कोरोना में भी सारे पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डाल के अस्पतालों में रिपोर्टिंग की, शमशान घरों में रिपोर्टिंग की, जहां जहां जो जो विपदाएं आई वहां रिपोर्टिंग की। यानी पत्रकार इससे बड़ा योद्धा हुआ, पत्रकार डॉक्टर की तरह लड़ता रहा। 18वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्री ने जब जब महामारी आई तब पत्रकारों को जो पत्रकारिता की जा रही थी उसे एक नया नाम दिया, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, उसका नाम था डिजीज जर्नलिज्म, रोगी पत्रकारिता। इस शब्द का इस्तेमाल कोरोना के दौरान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि कोरोना के दौर में हमने रोग को तो रिपोर्ट किया लेकिन रोग से कैसे बचा जा सकता है, इसके साधन कितने उपलब्ध हैं, उसको ज्यादा रिपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि अगर कोरोना में हमने पॉजिटिविटी बढ़ाई, जताई, दिखाई और समझाई, तो युद्ध के दौरान भी दिखा सकते हैं, मॉब लिंचिंग के दौरान भी दिखा सकते हैं, और उन तमाम विषयों और तमाम मुद्दों के दौरान जब युद्ध खड़ा हो तब भी दिखा सकते हैं। आप और हम पे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए एक संकल्प करें, इस शांतिवन की तपोभूमि में, पवित्र भूमि में जब शांति की बात की जाती है, तो शांति पत्रकारिता के दौर में, शांति पत्रकारिता के दौर को खड़ा करने के लिए आप और हम एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक छोटी शुरुआत करेंगे लेकिन इस विषय को सार्थक कर देंगे। मुझे लगता है आज इस दीपक की लौ में सूरज को ढाला जाएगा, देखना इसका उजाला बहुत दूर तक जाएगा। शुभकामनाएं बहुत बहुत।
बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन आचार्य भाई सबका। बहुत अच्छी बात कही कि आज हम यहीं से शुरुआत करके चलते हैं। शुरुआत यहां से करने से पहले हमें शुरुआत अपने यहां से करनी होगी। जब तक हम अपने अंतर से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लेखनी से नहीं कर सकते। हमें अपने विचारों से शुरुआत करने की जरूरत है। जब हमारे विचार शांत होंगे तो हमारी लेखनी भी शांत होगी। जब लेखनी शांत होगी तो हम जो भी शांत स्वरूप में बैठ करके लिखेंगे वो हमारे सकारात्मक होंगे, और जो सकारात्मक सोच से लिखेंगे वो सब तक पहुंचेंगे, तो वो शांत की स्थिति बनाने में प्रेरणा स्रोत्र बनेंगे। अभी उसी शांति की विचारधारा में बहते हुए मैं शांति दूत बनकर के एक शांति दूत को आमंत्रित करने जा रही हूँ। आज के हमारे चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी भ्राता बी के ब्रिजमोहन भाई जी, आप हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज के, 1953 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। आप संस्था के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेसर प्रोफेशन से भी हैं। एफसीआई में आपने 17 साल तक फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपने सेवाएं में रहे। 1973 में आप संस्था में समर्पित हुए। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में आप ब्रह्मा कुमारीज में आप हेड पोस्ट पे हैं। चीफ स्पोक्सपर्सन ब्रह्मा कुमारीज में, फॉर्मर चीफ एडिटर प्योरिटी न्यूज़पेपर जो हमारा निकलता था, आप उनके चीफ एडिटर भी हैं। मेंबर्स कमेटी के आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई से अनुरोध है आप अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
आज के सत्र के चीफ गेस्ट डॉक्टर बेनाती बेहरा जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर सारा नसरीन जी, भाई तुषार परभुने जी, जिन्होंने आज अभी अभी तीन और स्पीच दिया, डॉक्टर कुंजान आचार्य जी, अन्य अतिथि प्रोफेसर चित्रंजन मिश्रा जी, भाई अजय भारद्वाज जी, बहन ललिता शरावत जी, बी के उर्मिला बहन जी, भाई श्रवण कुमार देव जी, मेरे लेफ्ट में बैठे हुए सूर्य भ्राता जी, और आज की मंच संचालिका पूनम बहन जी। ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा माना जाता है, एक चीज होती है व्यक्ति और एक होता उसका व्यवसाय। व्यक्ति व्यवसाय से ऊपर होता है और व्यक्ति को देखना होता है, मैं अपने जीवन में जो कुछ मैं बनना चाहता हूं, जो कुछ मैं बनाना चाहता हूं, मैं अपने व्यवसाय के द्वारा भी उसी को आगे बढ़ाऊं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो शांति जर्नलिज्म है, शांति पत्रकारिता है, इसमें व्यक्ति का अपना जीवन का लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ब्रह्मा कुमारीज में हम जानते हैं 40,000 तो ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स हैं, फुल्ली डेडिकेटेड, जो सारे वर्ल्ड में सेंटर संभालते हैं। भाई भी हजारों की संख्या में है। इनको छोड़ दीजिए, जो फैमिलीज हैं, कम से कम 10,00,000 फैमिलीज हैं पूरी की पूरी, जो एक लक्ष्य को लेकर जीवन जीती हैं, और उनका लक्ष्य यही है शांति में रहना, शांति के वाइब्रेशन से लाना। तो अनेक व्यवसाय में, लगभग सभी व्यवसाय में हैं, जर्नलिज्म में भी बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन जब व्यक्ति एक लक्ष्य रख लेता है कि मुझे इस चीज को धारण करना और प्रोत्साहित करना है, केवल प्रोत्साहित करना नहीं, धारण करके करना है, तो बहुत थोड़े से लोग बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकते हैं, जैसा कि आप ब्रह्मा कुमारी में देखते हैं। हम जानते हैं कि माना जाता है कि जर्नलिज्म में बैलेंस रखना चाहिए, हमें दोनों तरफ को पेश करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मैं आपके आगे केवल एक उदाहरण दूंगा, वो है माता सरस्वती का। सरस्वती देवी को सब गॉडेस ऑफ विजडम मानते हैं, और हम जानते हैं कि जहां जहां कोई विद्या का काम होता है, सरस्वती का आह्वान किया जाता है, सरस्वती की वंदना की जाती है। यहां तक कि हमारे बहुत सारे स्वामी लोग भी, महात्मा लोग भी अपने नाम के साथ सरस्वती लगाने में फख्र महसूस करते हैं, वो सरस्वती की डिग्री धारण करते हैं। अब देखिए, सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ विजडम। उनके पास विजडम कहां से आई? तो सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, और परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारे विश्व में सत्य ज्ञान देकर विश्व को परिवर्तित किया था। अब सरस्वती को एक नहीं है, ब्रह्मा की अनेक पुत्रियां हैं, हजारों की संख्या में हैं, क्योंकि वो कोई शारीरिक पुत्रियां नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल डॉटर्स हैं, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारियां हैं। अब मैं आपको फर्क बताता हूं। आज के समाज में नॉलेज के नीचे की भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया आदि आदि, लेकिन नॉलेज को ऊंचे स्तर में गिना जाता है। और नॉलेज का भाव अर्थ होता है सच और झूठ की पहचान, अच्छे और बुरे को जानना, हर चीज के दोनों पहलू को जानना। और आज सारा इंटेलिजेंसिया ये समझता है कि नॉलेज बहुत ऊंची चीज है। हम भी ब्रह्मा कुमारीज में जब किसी से पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें पता है ना सच क्या है, झूठ क्या है, अब और क्या आप हमको बताने वाले। ये सच्ची बात है, सच और झूठ का ज्ञान आज संचार माध्यमों के द्वारा सब जगह फैल गया है। तो हम मान लेते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है, उसी को जीवन में धारण करते हैं, और उसी को घटनाओं को मीडिया के द्वारा हम रिपोर्ट करते हैं। अब ये बताइए, दुर्योधन क्या कहता था? वो कहता था मुझे पता है अच्छा क्या है, लेकिन मेरी अच्छा करने की रुचि नहीं है, अब इसको कॉमन मैन तक ले आइए, आजकल कॉमन मैन क्या कहता है, भाई देखो मुझे पता है ठीक क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन बात यह है कि मैं अच्छा करना तो चाहता हूं पर मेरे से हो नहीं पाता, और मैं खराब नहीं करना चाहता हूं पर मेरे से हो जाता है। अब ये एक कॉमन चीज है, व्यक्ति के मनस पटल पर उसकी बुद्धि में अच्छे बुरे का अच्छी तरह ज्ञान है, लेकिन क्लासिक स्टेटमेंट जो सब देते हैं वो यही देते हैं कि देखो भाई, मान लो आपको कह दिया जाए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से कि सुबह 4 बजे आपने बिल्कुल अलर्ट होकर मेडिटेशन में आना है, हो सकता है कष्ट करके थोड़ा एक आध दिन आप आ जाएं, लेकिन आपको कहा जाए ये रोज करना है, आप घर जाके क्या कहेंगे, बहन जी मैं करना तो चाहता हूं, करना तो चाहती हूं तो हो नहीं पाता, अच्छा ये चीज मैं छोड़ना तो चाहती हूं, यहां तो मैंने वादा किया था मैं क्रोध छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा पर हो नहीं पाता। अब बताइए, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, उसके बावजूद भी अगर आप अच्छा कर ना सकें बुरा छोड़ ना सकें तो ज्ञान किस काम का। इसलिए सरस्वती जी को गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है। अब नॉलेज और विजडम में फर्क क्या है, विजडम का अर्थ होता है एक ही पहलू देखना और अच्छा ही पहलू देखना। अगर हम सब जानते हैं सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, जैसा कोई चश्मा पहन ले जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखना शुरू कर दे वही हो जाता है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं हम सरस्वती की संतान या सरस्वती के भाई बहन ही गिन लो, भारतवासी जिस देश को विश्व गुरु कहा गया था और वो विश्व गुरु फिर बन रहा है, विश्व गुरु और तरीके से तो हम समझते हैं हम बन रहे हैं, आज हम बहुत सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स कर रहे हैं हर फील्ड में कर रहे हैं, हम समझते हैं हम उससे विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु वो होता है जिसका कोई कॉम्पिटिशन ना हो, चैंपियन होता है, वो कहता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, अन्य जितने फील्ड में हम भारत तरक्की कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और क्लोज कॉम्पिटिटर भी हैं, तो विश्व गुरु का भाव क्या है कि भारतवासी विजडम को अपनाएं। विजडम का भाव अर्थ क्या है शॉर्ट में, कि हम शुभ सोचे, शुभ यानी वन साइडेड व्यू लेके ठीक ही ठीक है बस, गलत की तरफ हम जाए ही नहीं, और ठीक को धारण करें, ठीक को सुने, ठीक को बोलें, ठीक को देखें, ठीक को अपनाएं, तो क्या होगा आपके अंदर अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हर एक के लिए आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना होगी, फिर आप कोई किसी प्रकार का चाहे रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आज तो हर आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई खबर मिल जाए और नारद मुनि की तरह 10-15 लोगों को तो रोज ही सुना देता है, वी आर स्प्रेडिंग दैट जो हमारे अंदर होता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हम भारतवासी हैं, भारत जगत गुरु तब था जब भारत आध्यात्मिक ऊंचाई पर था, और हम आध्यात्मिक ऊंचाई को अपनाएं, छोटी सी लाइट बहुत बड़े अंधेरे को दूर कर देती है। इस हॉल में अगर रात को आप छोटी माचिस भी जला लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश अंधकार तो एब्सेंस ऑफ प्रकाश है, इसलिए हम विजडम को अपनाएं, राइटियसनेस को अपनाएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं, सत्यता को अपनाएं, और सत्यता कोई बड़ी चीज नहीं है, यहां तो ये बताया जाता है आप आत्मा हैं यही सत्य है, क्योंकि बाकी चीजें पेरिशेबल है। अहिंसा को अपनाएं, अहिंसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है किसी को मारना काटना, अहिंसा का मतलब है जो गीता में कहा हुआ है कि काम क्रोध लोभ मोहंकार, ये 5 हिंसा के प्रकार है, इसको हम अपने मन से निकाल दें तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और कहा जाता है कि जो शुद्ध भगवान से हम हमेशा मोटर कार नहीं मांगते, बंगला नहीं मांगते, यही मांगते हैं हे परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि दे दे। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो दिव्य बुद्धि सरस परमात्मा जो देते हैं एक ही बात है, सिंपल, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखें और अपने मन के अंदर भी ये कोशिश करें कि मुझे कोई भी चीज है उसमें से शुभ ही देखना है। तो हम बहुत पावरफुली, चाहे वो हम जर्नलिस्ट हों, चाहे मौखिक रूप से हम दूसरों से व्यवहार करते हों, चाहे मानसिक वाइब्रेशन भेजते हों, हम बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम चाहते हैं, पीस जर्नलिज्म, मैंने पीस के द्वारा कम्युनिकेट करना पीस के लिए, और वो आप मानसिक तौर पर भी कर सकते हैं, ग्लोबल हार्मनी अवश्य आएगी और आने ही वाली है। ये एक शुभ सूचना हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने 80 साल में ये प्रैक्टिस किया है कि सारे विश्व के अंदर एकता हो सकती है। सारे विश्व के अगर 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी के लोग हार्मनी में रह सकते हैं तो बाकी दुनिया क्यों नहीं रह सकती। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी कि जो काम हम कर सकते हैं वो पूरा विश्व क्यों नहीं कर सकता है। आप सबको ज्ञात है कि यहाँ पे अभी राजनेता वर्ग का भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम चल रहा है, आपने उनमें से बहुत कीमती समय निकालकर हम सबको अपना अनुमोदन दिया। अभी भाई साहब हम सबसे विदाई लेते, विदाई नहीं लेकिन थोड़ा समय निकाल कर हम सबके बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा जी से। आप एक्स एडवाइजर ऑल इंडिया रेडियो बोध उड़ीसा से पधारे हैं। आप एक्स हेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उड़ीसा से हैं, हेड इंगेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उड़ीसा से हैं। आपने बेस्ट रिसोर्स पर्सन अवार्ड भी से भी नवाजा गया है। तो अनुरोध करती हूँ भ्राता चितरंजन मिश्रा जी। कृपया सब वक्ताओं से अनुरोध है समय की सीमा का अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो मुझे मजबूरन बेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ओम शांति। मैं पहले ब्रह्मा बाबा को प्रणाम करना चाहता हूँ, उसके बाद दादी प्रकाशमणि को प्रणाम करना चाहता हूँ क्यों वो मेरे इंस्पिरेशन है। और आप लोग जो बैठे हैं मंचा से आपको भी प्रणाम करना चाहता हूँ और आपसे कुछ सीखना भी चाहता हूँ। और आप लोग जो बैठे हैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और आपसे भी कुछ सीखना चाहता हूँ। और मैं पहले शांतनु भाई को मेरा आभार प्रदान करता हूँ कि मेरे को ये यहाँ पर बुलाने के लिए अपॉर्चुनिटी जो दे वो इसके लिए मैं आभार प्रदान करता चाहता हूँ। एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट्स? पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? मैं बोलता हूँ, एक लड़का और एक लड़की 24 इयर्स तक उनका पिताजी का लॉजिंग में रहता है और बोर्डिंग में खाता है। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स, पिताजी और माताजी कितना ये से वो लोग को बढ़ा करते हैं। जब वो नौकरी हो जाता है उसके बाद वो पैसा पिताजी और माताजी के मुंह में फेंक दे तो वो अच्छा नहीं है, लव एंड अफेक्शन देना चाहिए और उसके बदले उनसे दो चीज ले जाना चाहिए, उनका ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग लेके भगवान की बैंक में रख देगा तो वो अपने आप ऊपर आएगा। उसमें बोलते हैं पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही पर्वत पितरी पितृमापन प्रियंति सर्वदेवता, ये मेरा था। और अभी मेरे टॉपिक में मैं आता हूं। दुनिया में जितना सेवा है सबसे अच्छा सेवा है जर्नलिज्म। और जर्नलिस्ट जो होता है उसको डेडिकेशन और सिंसियरिटी ये सब है। और आप लोग जो काम करते हैं एक्चुअली आप लोग बधाई के पत्र है। कोने कोने से आप लोग सब समाचार ले आते हैं। पहले तो हमारा प्रिंट मीडिया था, उसके बाद अभी टेलीविजन इंटरनेट वगैरह वगैरह हो गया, तो आप लोग को बहुत इजी भी हो गया लाने के लिए। तो इसमें मैं उड़िया में एक बोलता हूं कि बणर फूल बणरे फूटी मरी जाऊला। जंगल में जो फूल फूटता था पहले वो वहां पर खत्म हो जाता है, मगर आप लोग इंडिया से कोने कोने से टैलेंट को लेके देते हैं, जो हम लोग को मालूम पड़ता है कि कुछ है। Am I right? तो ये आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अभी जो हो रहा है ये आप बोलिए ये रशिया और यूक्रेन मणिपुर ये सब होता है, मेरे को बहुत दुख लगता है। और ये चीज मेरे हिसाब से दो चीज में होता है, एक है ईगो वो क्रोध, ये दोनों के लिए ये होता है। और एक चीज मैं जानना चाहता हूं आप लोग से, जब ये दंगा फंगा खत्म हो जाता है छोटे छोटे बच्चे लोग अनाथ हो जाते हैं, मां लोग उनका सिंदूर ये कर देते हैं, अंधी मां उसका एक लड़का वो भी खो देता है, वो क्या दारुण है, मेरे हाथ को बहुत टच करता है। इसके लिए आप लोग को कुछ करना है। तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग को अगर पहले हमारा घर से स्टार्ट करें, उसके मोहल्ला से स्टार्ट करें, उसके बाद आपका छोटी शहर बड़े शहर से करें। और हम लोग का अप्रोच करने का एक ये है माता लोक। और मैं सोचता हूं ये ब्रह्मा बाबा जब ये स्टार्ट किए उसको ब्रह्मा कुमारी क्यों किए, कि करुणा और दया का अवतार है माता लोक। तो उनको अगर हम लोग कन्विंस करेंगे तो वो उनका जो रिश्तेदार ये है उनको ये से ये दंगा फंगा ये करने से थोड़ा उनको दूर रखेंगे। तो ऐसे करने से मैं मेरे हिसाब से तो थोड़ा आएगा। और आप लोग को एक चीज करना है, वो है ट्रूथ फॉरवर्ड। ट्रूथ से आपको वो ट्रूथ को विपन्न करके आप लोग को काम करना है। जैसे द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, वही हिसाब से हम लोग को करना है। और एक चीज है, एक छोटा कुत्ता उसको मां को पूछा, मदर प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज लॉक। वो बोली लॉक इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक योर टेल, सो गो ऑन बाय डूइंग योर ड्यूटी परफेक्टली, यू लास्टली यू सी द लॉक इज विथ यू एंड इन यू जस्ट लाइक योर टेल। तो मेरे आपको ये है कि हम लोग पीस कैसे लाएंगे, और मीडिया भाई लोग है वो तो करेंगे, हम लोग को भी कुछ कुछ करना है। और लास्ट में बोलना चाहता हूं, ये बिगड़ी किस्मत बदल जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर कहां जाएगी, ये बिगड़ी किस्मत बदल जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर कहां जाएगी, गम न कर जिंदगी से गुजर जाएगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन मिश्रा जी। अभी मैं अनुरोध करने चाह रही हूं ऐसी शख्सियत जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे महानुभाव बहुत सारे मीडिया पर्सन्स भाई बहनों ने
अपने अपने चैनल्स पे भी, अपने अपने टीवी में भी हमने बहुत बार सुना होगा। अभी अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय भ्राता सूर्य भाई जी से, आप अपने जीवन में ही एक गरिमा नाम से ही प्रभावित होती है। जिस तरह आकाश में चमकने वाला सूर्य सारे संसार में ऊर्जा देता है, ऐसे ही बदले में किसी की कोई कामना नहीं रखता, उसी प्रकार भ्राता सूरज जी भी आध्यात्मिक जगत में सूर्य की रोशनी प्रदान करते हैं। आपका व्यक्तित्व भी आपके सामने दर्शाता है। आंखों में ईश्वरीय स्नेह, चुंबकीय चमक, दिव्य गुणों की साक्षात्कार लहराता समुन्दर, गंभीर मुद्दा और किंतु जीवन में नवप्रतान और ईश्वरीय जीवन में आप में वो ईश्वरीय गुणों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। ज्ञान सूर्य परमात्मा का अनंत रतन भ्राता सूर्य जी, आपने 1968 में ईश्वरीय जीवन में अपना जीवन ईश्वरीय समर्पित किया। बहुत सारी ईश्वरीय किताबें आपने संचालित की है, जिनमें तनाव मुक्त जीवन, इस संकल्प शक्ति का प्रयोग, जरा सोचो, आगे प्रभु मिलन की रात, प्रभु मिलन के दिन, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात, आप सब हम मिलकर के ब्रह्मा भोजन खाते हैं दिन में तीनों बार। वो ब्रह्मा भोजन आपकी ही देखरेख में तीन बार जो बनता है, आपकी ही देखरेख में बनता है, जो बहुत स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन को आप ही संचालित करते बनाने के लिए। और उसके साथ साथ ही आपने देश विदेश में बहुत सारी संगोष्ठियां, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में आप अपनी प्रेरणाएं देते हैं। देश विदेश में जाकर के आपने सेमिनार्स भी किए और टीवी में एक बहुत ही अच्छा विशेष प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है समाधान। बहुत सारी मुश्किलों का हल करने के लिए समाधान प्रोग्राम, जो बहुत सारी मुश्किलों की को हल देता है, बहुत सारी आत्माओं को संतुष्ट करता है, वो एक ऐसा स्तोत्र हमारे सामने हमारे आदरणीय भ्राता सूरज जी, आपसे अनुरोध है अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखेंगे।
ओम शांति। सम्माननीय मंच, डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आचार्य जी ने तो बहुत सारी बातें आपके सामने कह दी, प्रोफेसर हैं आप, इसलिए वक्ता भी बहुत सुंदर हैं। मैं ये सोच रहा था, जो मेरा फील्ड रहता है आजकल, समाज में कौन कौन सी चीजें अशांति पैदा कर रही हैं, यदि उन चीजों को ठीक करने के लिए आप सबकी ओर से कुछ लाइट दी जाएगी तो ये समाज आपका ऋणी हो जाएगा। आप सब उन चीजों से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, नहीं तो आज मैं आप सबको करा देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऊपर ज्ञान सरोवर में, मैं वहां अधिक समय रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, मेडिकल वालों की बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें 700 MD MS बड़े बड़े डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुझे भी कल दो बार बोलने का उसमें मौका मिला। दो बोलना क्या, पूरी क्लासेस थी एक एक घंटे की और सवेरे मेडिटेशन का। मैं सोचा था ये बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इनके पास तो कोई समस्या होगी ही नहीं, लेकिन मैंने देखा क्लास से बाहर निकलते ही मुझे अपने कमरे तक जाने में कम से कम 45 मिनट लग गए। इतने लोग अपनी बातें लेकर आए। मैं सोच रहा था वेल एजुकेटेड लोग, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सम्मान पाए हुए लोग, अति धन संपन्न लोग समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। मेडिकल वालों की बात नहीं, संसार का हर प्राणी, मैं उसकी ओर आपका ध्यान खिंचाना चाहता हूं। हमने जो समाधान का सीरियल चला, एक सीरीज चली, जिसमें लगभग 1000 एपिसोड हमने रिकॉर्ड किए, विद्यार्थियों से लेकर गृहस्थी, बिजनेस पीपल, पॉलिटिशियंस, मेडिकल वाले, बीमारियां, इन सब पे हमने चर्चाएं की, बहुत सुंदर। तो मैं आपका ध्यान दिलाऊं, जो हमारी नई पीढ़ी है, जिसकी और हम सब बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, जो भारत का भविष्य है, उनमें क्या क्या हो रहा है जिसका समाधान आपसे भी वो चाहेंगे कि आपके चाहे प्रिंट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे यूट्यूब जो भी चैनल से आप जुड़े हैं, कि समाचार देने के साथ साथ, जैसे भाई साहब ने कहा देखा और लिखा, इसके साथ साथ समाज में शांति स्थापना के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है आ रहा है प्रकाश में, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, सुसाइडल थॉट्स अनेक युवकों में बढ़ते जा रहे हैं। जरा सी सफलता न मिली, जरा से कहीं फेलियर हो गए, जरा सी निराशा आ गई जीवन में, बस मर जाऊं। इस पर सबको काम करना है कि मरना तो कायरता है, हमें मरने वालों को जीना सिखाना है। ऐसी सुंदर लेख आप प्रस्तुत करें, छोटे भी हों, जिनको लोग पढ़ें और जीवन में आशा बन जाए, जीवन में उमंग उत्साह आ जाए, जीवन फिर से होपफुल हो जाए, जीवन में नई एनर्जी आ जाए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी बात, युवा वर्ग में ही मानसिक रोग तेजी से पनपते जा रहे हैं। उसका कारण भाई साहब भी बोल रहे थे, ये जो सोशल मीडिया है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो हमारे लिए वरदान बनकर भी आया। हमारी सबकी जेब में पड़ा हुआ फोन हमारे लिए वरदान भी है। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब हमें अगर दिल्ली में फोन करना होता था तो आधा घंटा समय लेकर जाते थे, कंकाल करना पड़ता था, कट गया तो फिर से जोड़ते थे, कितनी मुश्किलात होती थी। अभी अमेरिका में फोन करना ऐसे होता है। ये वरदान भी है, हम सुंदर सुंदर चीजें सारे संसार तक पहुंचा सकते हैं, एक एक मिनट में, आधे आधे मिनट में। इस वरदान को हम श्राप न बना दें, ये हमें अवेयरनेस देनी है, ये जागृति देनी है मानवता को, नई पीढ़ी को, बड़ों को भी। मेरे से बहने बात कर रही थी, आपके ग्रुप के बच्चे मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उनसे लिया ही नहीं जा सकता। एक ने सुनाया, लड़की से मोबाइल ले लिया गया, उसने तोड़ फोड़ कर डाली, जो घर में लैपटॉप था ऊपर से नीचे फेंक दिया, अलार्म घड़ी थी फेंक दी, बर्तन फेंक दिए, किताबें फाड़ दी, तूफान कर दिया घर में। ये मोबाइल कल्चर, मैंने आपको बताया सुंदर कल्चर भी है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, जिसपे हमने बहुत काम किया है, हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मैंने इस पे बहुत काम कराया है, हजारों डिप्रेशन के केस ठीक कराए हैं, सैकड़ों ऐसे लोग जिनको रात को नींद नहीं आती थी वो सोने लगे हैं सुख से, जिनके और मानसिक रोग कई हो गए। आजकल बहुत चल रहा है, एक विचार आ गया, बार बार सोच रहे, बार बार सोच रहे, सारा दिन सोच रहे, अगले दिन सोच रहे हैं। इससे बचाने के लिए मैं आपको एक बहुत डीप सीक्रेट बता रहा हूं, जो आपके भी काम आएगा और आपको समाज में परोसना है। ये हम हर मनुष्य के मन में क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। ये एक साइंटिस्ट उस क्रिएटिव एनर्जी को ही तो यूज करता है, एक बड़ा इंजीनियर उस क्रिएटिव एनर्जी को ही तो यूज करता है, एक पॉलिटिशियन जो सफल है वो भी उस क्रिएटिव एनर्जी को यूज कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, उठते ही मोबाइल खोल देते हैं, सोते हैं तो मोबाइल देखते हुए सोते हैं। वो चीजें हमारे मन की दिशा को प्रतिपल डाइवर्ट करती हैं और जो हमारी क्रिएटिव पावर है माइंड में वो समाप्त होती जा रही है। मेरी चर्चा हो रही थी, अभी एक सज्जन बैठे हैं यहाँ, बड़े स्पीकर हैं वो भी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, फायदे तो होंगे, लेकिन जो रियल इंटेलिजेंस है उसका क्या होगा। मनुष्य कि जो अपनी क्षमताएं हैं, जो उसका विजडम है, जो उसकी इनर पावर्स हैं, हमें उनको जगाना है, तब समाज में हम शांति स्थापित कर सकेंगे। वो सो चुकी हैं, वो सोती जा रही हैं। ये वर्तमान समय की बहुत ही निगेटिव देन हमारे समाज को हो रही है, हमें अवेयर करना है। आप सब जैसा कहा गुड फ्रेंड हैं समाज के, और मैं तो आप सबको एक नाम देना चाहता हूँ, आप ही समाज के निर्माता हैं। कल का समाज कैसा होगा उसका निर्माण आपको ही करना है। आप सच्चे कलाकार हैं जो कल को आकार देंगे। आप समाज में जैसी लहर फैलाना चाहे फैला सकते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब इलेक्शन होता है स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हरेक के मन में, हरेक के मुख पर, जहां तहां चर्चाओं में, टीवी पर, टेलीफोन पर, अपने छोटे फोन पर क्या चर्चाएं होती हैं? केवल इलेक्शन। मैं क्या करता हूं, इलेक्शन क्रांति आ गई है सारे देश में, ऐसी ही पीस की क्रांति भी आप ले आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ला सकते हैं, हम सब मिलकर ला सकते हैं, अगर कुछ ऐसी बातें समाज में दी जाएं जो हरेक के मन को पीसफुल करें। भाई साहब युद्ध की पत्रकारिता की बात कर रहे थे, वो उस सबसे आप परिचित हैं। बहुत सारे अखबारों में मैं देखता हूँ ऊपर एक सुंदर बात लिखी रहती है, रविवार को परिवार के बारे में बहुत सारे लेख आते हैं, मेडिकल मेडिसिन के बारे में भी दो दो पेज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम भी कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं, आप भी समाज को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, सिखाते रहिए। ये भारत निश्चित रूप से अब बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु ही नहीं, लाइट हाउस, पीस हाउस बनेगा हमारा देश, क्योंकि हम सभी कुछ चीजों को भूल गए हैं। देखिए आपके सारे ही चैनल्स में या प्रिंट मीडिया में अभी बात आती रही, किसी ने सनातन धर्म के लिए कुछ कह दिया था, एक आक्रोश पैदा हो गया सबके अंदर, एक लहर बदल गई। हम यदि इसके विपरीत, सनातन धर्म क्या है, ये कितना महान है, ये मनुष्य को देवत्व प्रदान करने वाला है, ये मनुष्य को महान बनाने वाला है, और जितने महान पुरुष हमारे हिंदू धर्म में हुए हैं उतने महान पुरुष संसार के सारे देशों में मिलकर भी नहीं हुए हैं। अगर हम अपने धर्म की महानताओं को उजागर करेंगे तो धर्म के प्रति जो नफरत पैदा होती है वो समाप्त हो जाएगी। मैं सोचा करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं भारत को। देखिए ये केवल पॉलिटिकल पावर से नहीं होगा, जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलकर काम करेंगी तब भारत सबसे महान टॉप पर पहुंचेगा। पॉलिटिकली हम बहुत अच्छे हो जाएं, हमारी इकोनॉमिकल पावर पांचवें स्थान से तीसरे पर आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अगर नीचे गिर जाए, मनुष्य यदि मानवता को भुला दे, मनुष्य के मन में यदि विकृतियां आ जाएं, तो ये विकास तो सब बेकार हो जाएगा ना। स्पिरिचुअलिटी मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है, तो मैं सोचा करता हूँ ये मोदी जी का विजन केवल नहीं है, ये परमात्म प्लानिंग है। आप सबको पता होना चाहिए गॉड्स प्लानिंग है भारत को पुनः विश्व गुरु नहीं उससे भी आगे बहुत कुछ बना देने की, और ये सफल होगा। पॉलिटिकली हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, स्पिरिचुअली हम और आप सब मिलकर करेंगे, तो मेरी शुभ भावनाएं हैं आप अपने मन को पीसफुल कर लें। जैसा आप सुन रहे हैं हम जैसे होंगे वैसा ही तो लिखेंगे, मैं भी लिखा है बहुत कुछ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पहले मैं लिखता था बहुत कुछ, जो हमारे मन में होता है, जो हम अपने को गाइडलाइन देते हैं वही गाइडलाइन हम दूसरों को देते हैं। तो मेरी शुभ भावनाएं हैं आप यहाँ से बहुत पीसफुल होकर जाएं, पावरफुल होकर जाएं, महान बनकर जाएं, परमात्मा से अपने को जोड़ कर जाएं, तो आपकी पत्रकारिता में प्रभाव आ जाएगा। जो कुछ आप लिखेंगे वो बहुत प्रभावकारी रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और आप नव समाज के सृजनकर्ता बन जाएंगे। यही मेरी शुभ भावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मैं भी छुट्टी लेता हूं। आज थोड़ा शरीर में गड़बड़ हो गई थी, मुझे ऊपर भी जाना है, क्षमा चाहूंगा। आप सब आगे बढ़ें और अपने देश को महान बनाने में योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कार्य हम कर सकते हैं वो कलम हम सबके हाथों में है और आप सबके हाथ में वो काम दिया है कि मीडिया ही वो काम कर सकता है कि शांति का कार्य की बागडोर, शांति के कार्य की बागडोर पत्रकारिता के हाथ में, मीडिया पर्सन के हाथ में है। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, सिस्टर ललिता शेरावत MD विजन मीडिया मल्टीमीडिया नेटवर्क दिल्ली से। आप दिल्ली से पधारे हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री ऑफ स्वच्छ भारत अभियान में आपने अवार्ड सम्मानित किया है और उसके साथ साथ आप शी इज ए मोटिवेशनल स्पीकर विद ए प्रमोशन एंड द कंपेन मैनेजमेंट। शी इज ऑल्सो ऑथराइज्ड अ फ्यू बुक्स ऑफ द प्रोड्यूस एंड द अवार्ड विनिंग अंडर द डॉक्यूमेंट्री सिस्टर ललिता शेरावत जी।
सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है, वहीं नकारात्मक सोच हर समाधान में समस्या उत्पन्न करने में सक्षम है। ओम शांति। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की कृपा दृष्टि से प्रगतिमान, शांतिमय, सुवैचारिक मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, वंच विमुख विराजमान मेरे सम्मानित एवं प्रिय बहनों एवं भाइयों, सद्भावना एवं शांति। वस्तुतः दो शब्द जो प्राणी मात्र के मूल से संबंधित थे, हैं और रहेंगे। इस प्राणी जगत में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसे शांति या सद्भावना से जोड़ करके देखा ना जाए या जिसका जीवन इनसे जुड़ा हुआ ना हो। देखने का नजरिया है, नजरें नजरिए को बदलती हैं, उसकी वास्तविकताओं को बदलती हैं, तथ्यों को बदलती हैं, तथ्य ही कथ्य बनते हैं। प्राणी मात्र के मूल से संबंधित ये शब्द जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई, वैश्विक वर्चस्व का आगाज व अंतिम छोर बंधा है। इस तथ्य की मूल्यवानता का आज तथ्य में परिवर्तित हो चर्चा और मंथन के लिए इस मंच पर आना ही इसकी पारदर्शिता और इसके महत्व को समझाता है। अगर इतने महत्वपूर्ण यह शब्द ना होते तो शायद इसके ऊपर चर्चा करने के लिए ब्रह्म कुमारी जैसा एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा मंच, एक बड़ा स्थान जहां से आज पूरे मानवता को मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जरूरत ना पड़ती कि इसके ऊपर चर्चा करी जाए। और इस चर्चा का कहीं वैश्विक स्तर पर जुड़ना इसकी महत्वता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उससे भी ज्यादा जरूरी है जब हम और आप मीडिया से जुड़े हुए मेरे भाई बहन, हम जैसे व्यक्ति जो मीडिया को मैं एक बहुत ऊंचे स्थान से नहीं आंकूंगी, जैसे मेरे भाइयों ने, पहले के प्रवक्ताओं ने बताया कि जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ है आज एक छोटे स्तर से लेकर ऊंचाइयों का स्तर ढूंढना मुश्किल है जहां पर मीडिया की पहुंच है। और यह भी सत्य है कि मीडिया ने वो ताकत हासिल की हुई है कि हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारी महिलाओं की सुरक्षा को, हमारे देश के आगाज को विश्व पटल पर ले जाकर के खड़े करने का साहस वो रखते हैं, हिम्मत वो रखते हैं, ताकत वो रखते हैं। फक्र महसूस होता है जब हम यह सुनते हैं कि आज लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ इतना मजबूत हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस मजबूती के साथ वो जिम्मेदारियां जो हमारे पास आई हैं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम उन जिम्मेदारियों को समझें और उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने समाज को, देश को आगे तक लेकर के जाएं। मीडिया तथाकथित लोकतंत्र का सिर्फ चौथा स्तंभ आज के दौर में वैश्विक सद्भावना, आपसी मेलजोल, सात्विक समानता के अंकुश के उपजाने के लिए सरल भाषा में कहा जाए तो पूर्णतः दायित्वमान है। पिछले दो दिवस में इस मंच पर हुई चर्चाओं में विशिष्ट एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवियों, भाइयों, बहनों, वक्ताओं के द्वारा आंतरिक शांति व प्रेम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभाषित व व्याख्यित की गई, क्योंकि सच्चाई तो ये है, ओम शांति ये दो शब्द कहीं पूरे ब्रह्मांड की सारी समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर चीज का आगमन और निकास इन्हीं शब्दों के अंदर से होता प्रतीत होता है। आज वही मधुरता, प्रेम, सौहार्द, बुद्धिमता, संयमित भाषा व कार्यशैली का प्रमाण पत्रकारिता में अब अनिवार्य हो चला है। प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा असरदायी होता आया है। मानते हैं कि पत्रकारिता में अपने आप को आज के दौर में अगर हम एक आज की स्थिति में जाएं, तो खुद के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ हमें बदल कर आगे देना पड़ता है। वो बदलाव सिर्फ एक हमारी कलम का नहीं होता, उस बदलाव के पीछे कारण भी बहुत होते हैं। कहीं राजनीतिक कारण भी है जो सत्य है, अगर हम सत्यता को मान करके चलें, तो कहीं आज की राजनीति ने मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा है और यह सत्य है। कहीं हम और आप इन चीजों से अछूते नहीं हैं, चाहे हम एक छोटे स्तर पर एक छोटा प्रोडक्शन हाउस चलाते हो या किसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी चैनल के साथ जुड़े हैं, लेकिन इस चीज को हम महसूस करते हैं कि देश में बदलती हुई राजनीतिक समीकरणों के साथ मीडिया का बदलना स्वाभाविक लाजमी नहीं, उसकी मजबूरी भी है। लेकिन जरूरी है कि हम उस मजबूरियों को कुछ इस तरीके से समाज के सामने परोसें, विश्व के सामने परोसें, कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं हमारे आने वाली जेनरेशन पर, हमारी सोसाइटी पर, आज के दौर के हमारे भाई बहनों के ऊपर कम से कम आए। हम कम से कम यह कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। कुछ भी इस जीवन में कभी स्थायी है ही नहीं। हमसे पहले बहुत कुछ बदल चुका, हमारे बाद भी बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जो खबर मीडिया पर दिखाई जाती है कहीं वह एक मोहरबंद डॉक्यूमेंट के समान उभरकर समाज में सामने आती है। उसकी सत्यता पर आंख मूंद कर हमारा समाज विश्वास करके आगे बढ़ता है। सबूत आपके सामने पेश है। जब दो मूवी का मैं उदाहरण आपको देती हूं, केरला स्टोरीज, कश्मीर फाइल्स, जब ये मूवियां समाज में आई, ये पिक्चर समाज में आई, हमने और आपने इसकी चर्चाएं सुनी, इसकी वास्तविकताओं की शायद पूर्णतः पड़ताल ना हमने गूगल पर करी, ना अपने आसपास जानने का प्रयास किया। हमने सिर्फ एक पहला कदम उठाया, टिकट ली, थिएटर में गए और हमने वो मूवी देखी। उस मूवी के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए, जो सीन दिखाए गए, जो स्टोरी बताई गई, गारंटी के साथ कहती हूं कि 99% व्यक्तियों ने उसको सच मान करके अपनी मानसिक स्थिति को उस हिसाब से बदलाव की तरफ लेकर गए हैं। 1% होंगे जिन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि कहीं डायरेक्टर ने सिर्फ एक टीआरपी लेने के लिए तो अपने शब्दों में या उसकी कथा के अंदर कोई फेरबदल नहीं किया है। यह सत्यता है, यही सच्चाई है हम मीडिया की, जिसे हम और आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। परिस्थिति के विवश होकर के हम कई बार इन चीजों में बदलाव जरूर कर देते हैं। एक अमेरिकन ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर के मैं दो शब्द यहां पर आपको बताना चाहूंगी, जोशुआ ओपेनहाइमर के। पत्रकारिता का कार्य है जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारियों को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना, ताकि हम उस जानकारी का उपयोग मानव की स्थिति को सुधारने में कर सकें। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि वो झूठ उस सच से ज्यादा बेहतर है जो किसी का भला करे, जो किसी समाज को बचाने में कामयाब हो, किसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए, किसी देश को बचा सके। छोटी सी कहानी सुनाऊंगी यहां पर मैं आपको, बातों में याद आ गई। एक साधु महात्मा थे, बड़े ज्ञानी, दूरदर्शी, देख करके सामने वाले की परिस्थिति, उसके सवालों के जवाबों का ज्ञान देना बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें आता था। लेकिन इसी धरती पर सब कुछ मौजूद है, सकारात्मकता भी है, नकारात्मक भी है। जहां पर अच्छे प्राणी यहां मौजूद हैं, वहीं पर ही कड़वाहट भी हमें सृष्टि में जरूर मिल जाएगी। एक व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना महात्मा जी की ताकत को चैलेंज किया जाए, उनके ज्ञान को परखा जाए। पहुंच गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी के सामने बैठकर उन्होंने एक कबूतर को अपने शर्ट में छुपा लिया और महात्मा जी से बोले, महात्मा जी मेरे पास एक कबूतर है। उन्होंने कहा, हाँ बच्चा है। अब महात्मा जी ये बताओ कि ये कबूतर जिंदा है या मरा हुआ है। महात्मा जी शांत। महात्मा जी को क्योंकि ये पता था कि कबूतर जिंदा है और वो इस बात को जानते भी थे, लेकिन उनके सामने जो उस वक्त की स्थिति थी, परिस्थिति थी, दुविधा ये थी कि अगर वो ये कह दें कि ये कबूतर जिंदा है तो वो अंदर से उसकी गर्दन दबाएगा और मरे हुए कबूतर को सामने लाके, क्योंकि उसका लक्ष्य यह जानना था ही नहीं कि महात्मा जी के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी उनके अंदर बातों को परखने की सच्चाई मौजूद है। वो तो सिर्फ एक लक्ष्य लेकर वहां आया था कि मुझे महात्मा जी को झूठा साबित करना है। महात्मा जी ने कहा, बेटा कबूतर मरा हुआ है। उसने कबूतर बाहर रखा, कबूतर तो जिंदा था। कि महात्मा जी दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़िए, ज्ञान आपको नहीं है, कबूतर जिंदा था लेकिन आपने कहा मरा हुआ है। उस झूठ का महात्मा जी ने कहा कि मेरे लिए आज ये झूठ या मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया मुझे वो कबूल है, बजाय इसके कि मैं एक निर्दोष प्राणी के आज प्राण हर लेता अपने दो शब्दों के कारण। तो भाइयों और बहनों, निवेदन आपसे यही है, बड़ा संगीन टॉपिक है, 5 मिनट का वक्त है, घंटी बज चुकी है, बहुत लंबा नहीं बोल पाऊंगी। छोटी सी बात कहूंगी कि आज चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, 500 दिनों से ज्यादा चल चुका है, कहीं मीडिया अगर इसके अंदर एक समझदारी के साथ भूमिका अदा करती तो शायद परिस्थितियां आज कुछ और होती। छोटा सा एक दूसरा उदाहरण यह दूंगी, बहुत लंबा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, कि शायद आज पाकिस्तान और भारत के विषय में शब्द पाकिस्तान सामने आते ही हमारे और आपके दिमाग में जो सनसनियां फैलती है उसका कारण कहीं मीडिया पर दिखाई गई वो खबरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट घोलती हैं, जिसने हमारे और आपके दिमाग में ये बात बसा दी कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन इस धरती पर भारत का कोई नहीं है। अगर उसी के बदले थोड़ा सा सौहार्द, थोड़ी सी सद्भावना, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक शब्द दिखाए जाते तो शायद पिछली कड़वाहटों को भुलाने में हमें और आपको बहुत ज्यादा आसानी होती और आज हमारा व्यवहार पाकिस्तान शब्द सुनते ही अंदर से नफरत का नहीं, शायद कहीं थोड़ा बहुत प्रेम भाव भी अंदर से निकलता। कभी भी परिस्थितियां एक सी नहीं रहती, हमें सिर्फ इन बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभालना होता है। दो शब्द मेरे ही लिखे हुए हैं, कविताएं भी लिखती हूं, आप सबके आशीर्वाद से दो उपन्यास भी लिख चुकी हूं। वक्त को देखते हुए अपनी कविता के ही दो शब्द आपके सामने कहना चाहूंगी कि इस वक्त की आंधी में मैंने उड़ती शिखाएं देखी हैं, जिनके कदमों तले थी रियासतें, वहां तलवों तले खिसकती पादुकाएं देखी हैं। वक्त खूब बदलता है, देखा है रुंधते मिट्टी के खिलौनों को, देखा है रुंधते मिट्टी के खिलौनों को, रोते बिलखते शहजादे सलोनों को, बिखरते मोतिहार अलबेलों को, टूटते आलिशान महलों को। इन महलों के खंडरों में, इन टूटे महलों के खंडरों में मैंने मिटती सभ्यताएं देखी हैं, इस वक्त की आंधी में मैंने उड़ती शिखाएं देखी हैं। कविता बहुत बड़ी है, सिर्फ एक मुखड़ा आपके सामने लेकर आई हूं, इस निवेदन के साथ कि अपने कर्तव्य परायणता को आगे बढ़ते हुए समझदारी के साथ थोड़ा प्रेम भाव सौहार्द अपने फर्ज को बढ़ाते हुए आगे लाइए। देखिए बदलाव हर जगह आता है। और हम सब कुछ बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। जरूरत है एकजुट होकर परिस्थिति को समझकर अपनी पत्रकारिता में बदलाव लाने की। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन ललिता जी। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन, आप एडिटर ज्ञानमृत मैगजीन शांतिवन से हैं। आप 1985 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित हैं, अपना जीवन 1985 से समर्पित जीवन कर करके ईश्वरीय सेवाओं में दे रहे हैं। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों में भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर के सेवाएं दी और नेपाल में भी जाकर सेवाएं दी। उसके साथ साथ आपने अफ्रीका महाद्वीप में भी ईश्वरीय सेवाएं देने का चांस लिया। स्ट्रेस फ्री लिविंग, ड्रग एडिक्ट, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, 3Q में भी उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करने के लिए स्व प्रबंधक नेतृत्व कला में भी व्यक्तित्व विकास जैसे कई विषयों पर भी आपने विचार दिए हैं। सो अभी अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहन उर्मिल बहन जी।
ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, सम्मानित मंच और सभा में विराजमान सभी भ्रातागण और भगिनी, बहुत देर से हम शांति पत्रकारिता के बारे में सुन रहे हैं। वास्तव में शांति पत्रकारिता तो फल है, इसका बीज कहाँ है? जब तक हम बीज नहीं ढूंढेंगे, एक फल हमारे सामने कैसे आएगा? और बीज है हम सबका मन, क्योंकि जब तक मन में शांति के विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो वो शांति कागज पर कैसे आएगी, या वो शांति हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए कहा जाता है कि एक पत्रकार का मन एक उर्वरा भूमि की तरह से है। उर्वरा भूमि अनेक पौष्टिक चीजें उत्पन्न करती है और लोगों को शारीरिक बल देती है। इसी तरह से एक पत्रकार का उर्वरा मन ऊंचे विचारों को उत्पन्न करता है, उनको प्रेषित करता है और लोगों को मानसिक बल प्रदान करता है। आज हम सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, वैश्विक जीवन में शांति कैसे लाएं, चेतना का रूपांतरण कैसे करें, अपने भावों का उदात्तीकरण कैसे हो, इसके लिए हम जिस मीडिया क्षेत्र में जुड़े हैं वहां कोई ना कोई एक छोटा स्तंभ शांति का अवश्य यूज करें। अवश्य शांति के कुछ विचार प्रतिदिन प्रेषित करें। कहते हैं हवा फूलों की खुशबू को फैला देती है, उसी तरह से हम मीडिया कर्मी भी शांति के विचारों को हवा बन करके जन जन तक फैलाएं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से यदि शांति के विचार नहीं फैलाए जाएंगे तो शांति और अहिंसा स्थापन करने का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है। सवाल ये है कि ये शांति आए कहाँ से, ये मूल्य आए कहाँ से? तो इनका स्रोत है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। हम सब आत्माएं हैं और जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, अपने आप का अध्ययन करते हैं, अपने आप पे शोध करते हैं, तो हमें पता चलता है कि शांति हमारा मूल गुण है। शांति आत्मा का एक इंग्रेडिएंट है। जब वो परमात्मा के घर से आती है तो शांति को अपने साथ लेकर के आती है, और इसीलिए हम सब शांति की कामना करते हैं। जो मूल इंग्रेडिएंट है वो तो हमें हमेशा चाहिए। जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए, इसी तरह से आत्मा की खुशहाली के लिए, वैश्विक प्रेम के लिए, समरसता के लिए हमें शांति चाहिए। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं, अपने भीतर की ओर उतरते जाते हैं, उतना उतना शांति का अनुभव बढ़ता है। और जितना शांति का अनुभव बढ़ता है, हम अशांति में भी शांति खोज सकते हैं, हम समस्या में भी समाधान खोज सकते हैं, और उसी शांति को हम प्रेषित करते हैं। अब आप देखिए, आज के समय में हम देखते हैं कि मानव आत्माओं में भी भेदभाव और परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी बहुत भेदभाव है। अभी दंगों की बात हो रही थी, कई बार तो भगवान के नाम को लेकर के ही दंगे होते हैं, उसके स्वरूप को लेकर के ही दंगे होते हैं। कोई कहता है मेरा भगवान ऐसा है, कोई कहता है मेरा भगवान ऐसा है। पहले दंगा होता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसमें कितने युद्ध का समय जाता है, उसका वीडियो बनता है, उसमें युद्ध का कितना समय जाता है, फिर उसके लिए वकील देखिए, न्यायाधीश देखिए, अदालत का कितना समय जाता है, पुलिस वालों का। तो हमारे यूथ की जो सारी एनर्जी है इन नेगेटिव न्यूज को बनाने में या फिर उस दंगे फसाद को सुलझाने में लग जाती है, तो हम देश के लिए रचनात्मक कार्य कब करेंगे? अब अगर हम सबको ये पता पड़ जाए कि परमात्मा एक है और वो हम सबका पिता है, और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रचयिता है, क्योंकि बीज तो एक ही होता है, पेड़ की डालियां चाहे कितनी भी हों, तो उस बीज को अगर हम जान लें तो इन सारे झगड़ों से मुक्त हो सकते हैं और हमारे यहाँ शांति समाज में आ सकती है। और जब शांति की बातें होंगी, जब शांति की घटनाएं घटेंगी, तो हम जरूरी बात है उनको सुनाएंगे, सुनेंगे, उनका प्रचार करेंगे, शांति पत्रकारिता हो जाएगी। लेकिन मूल दो मुद्दों पे हम एकमत हो जाएं कि परमात्मा एक है और हम सब उसकी संतान, आपस में भाई भाई हैं, हम सब के खून का रंग लाल है, हम सब का पसीना नमकीन, हम सब के आंसू नमकीन है, सुई चुभो तो सबको दर्द एक समान होता है। बाहर से भले कोई लंबा ठीगा, काला गोरा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर कुछ भी हो, लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तो हमें भीतर समानता नजर आती है, और जब हम उस समानता को पहचान लेते हैं तो यही तो शांति का आधार है, यही तो समाधान है। ब्रह्मा कुमारीज में प्रतिदिन एक तरह से शांति की न्यूज प्रसारित होती है, सुबह सुबह 7 से 8 सारे विश्व में हम शांति की न्यूज प्रसारित करते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, एक बार सुबह का जो सत्संग होता है उसमें परमात्मा पिता ने एक छोटी सी बात बोली कि झुकना ही झूलना है, और एक व्यक्ति ने उसे अपने डायरी में लिखा और गुनगुनाता हुआ चला गया, झुकना ही झूलना है, झुकना ही झूलना है। अपने घर पहुंचा तो उसके घर में किसी का पत्र आया था कि भाई मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे के साथ मेरी बनती नहीं है, वो अलग हो गया है, अब मेरी बेटी की शादी है, उसमें अगर वो नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, तुम इसका समाधान बताओ। तो उसने वही लाइन लिख दी, झुकना ही झुलना है, बाकी कुछ लिखा ही नहीं। और उस व्यक्ति ने जब वो लाइन पढ़ी तो उसको एकदम दिल में उतर गई कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। वो अपने पुत्र के घर गया, दरवाजा खटखटाया, पुत्र ने दरवाजा खोला, बोलचाल तो बंद थी, लेकिन पिता ने सोचा चलो मैं झुक के देखता हूँ। और पुत्र ने बड़े प्यार से पिता को रिसीव किया, पिता ने कहा भाई तुम्हारी बहन की शादी है, तुम नहीं आओगे? उसने कहा क्यों नहीं आऊंगा, चलो। और फिर पुत्र ने सारी जिम्मेवारी संभाली, सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। तो इसने वापस उसको धन्यवाद दिया कि भाई तुम्हारी एक लाइन ने तो कमाल कर दिया, मेरी समस्या का समाधान कर दिया, जिसको कोर्ट नहीं सुलझा सकती थी, पंचायत नहीं सुलझा सकती थी। तो उसने कहा कि ये लाइन कोई साधारण नहीं थी, ये सीधी ऊपर से आई थी। उस एक लाइन में ऐसी क्या करामात थी, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में जो ईगो के कारण दीवार खड़ी हो गई थी, उस एक लाइन ने उस दीवार को तोड़ करके पुल बना दिया और दोनों मिल गए। तो हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से पुल बनाएं और लोगों को मिलाएं, यही शांति पत्रकारिता है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन उर्मिला जी। अभी मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता सरवन कुमार देव जी, आप नेपाल से पधारे हैं, चेयरपर्सन फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिज्म सप्तरी भ्राता शर्वन कुमार त्योर जी।
ओम शांति। वैश्विक सद्भाव का लागी शांति पत्रकारिता यस सत्र का सत्रमा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका बीके ब्रह्मकुमार ब्रिज मोहनजी, यस सत्रका प्रमुख अतिथि डाक्टर मीनात्री बेहराजी, यस मञ्चमा उपस्थित रहनुभएका डाक्टर कुञ्जन आचार्यजी, प्रोफेसर चित्रञ्जन मिश्रजी, अजय भारद्वाजी, ललिता शेरावतजी, बीके उर्मिलाजी, प्रमोद कुमार सूर्यजी, प्रोफेसर डाक्टर सरा नासरिन, तुषार प्रभावनी सहित मञ्चमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव र यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज तथा सहकर्मी पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र नेपालको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहता हूँ इस संस्था ब्रह्म कुमारी को, जो हमको कुछ अपना वैश्विक सद्भाव के लिए शांति पत्रकारिता के संदर्भ में कुछ बात रखने के लिए मौका दिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खास करके हम नेपाल से हैं, नेपाल के विषय में, नेपाल के पत्रकारिता के विषय में कुछ बात रखना चाहेंगे। नेपाल में पत्रकारिता अभी आगे बढ़ते जा रहा है। नेपाल में खास करके पत्रकारिता का देखने का तीन निकाय, तीन संस्था है। सबसे पहले प्रेस काउंसिल है, उसके बाद संचार विभाग है, उसके बाद हम जिससे संलग्न है वो नेपाल पत्रकार महासंघ है। ये नेपाल पत्रकार महासंघ अम्ब्रेला संगठन माना जाता है, नेपाल का सब पत्रकार का वो छाता संगठन है। इसमें खास करके नेपाल में पत्रकारिता का अभ्यास काठमांडू जो है, काठमांडू में खास करके विषयगत यानी कि बीच पत्रकारिता किया जाता है, और हम लोग जहां से बिलोंग्स करते हैं खास करके वहां पे जो पत्रकारिता होता है उसको मोफसल का पत्रकारिता कहा जाता है। कहने का मतलब हर एक चीज का न्यूज एक पत्रकार को लिखना पड़ता है, गीत संगीत से लेकर के राजनीतिक से लेकर के खेलकूद से लेकर के धार्मिक सांस्कृतिक सब समाचार जो लिखता है वो मोफसल का पत्रकार कहलाता है हमारे नेपाल में। और नेपाल का बात किया जाए तो पत्रकारिता का 3P पे पत्रकारिता हो रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स, पुलिस और पब्लिक। जैसे हम अध्ययन किए हैं यहाँ आप लोग के भारत में, खास करके मेरा अध्ययन से 4C से पत्रकारिता हो रहा है, कहा जाए तो सेलिब्रिटी, क्रिकेट, क्राइम और सिनेमा ज्यादातर प्रायोरिटी पाया जाता है। जैसे हम नेपाल में पॉलिटिक्स, पब्लिक और पुलिस पत्रकारिता करते हैं, भारत में ये 4C से पत्रकारिता मेरा अनुभव कह रहा है ये पत्रकारिता हो रहा है, मगर शांति का पत्रकारिता अभी तक न भारत में शुरू हो पा रहा है और न नेपाल में शुरू हो पा रहा है। खास करके हम लोग जो प्रायोरिटी देते हैं, दोनों देश का पत्रकार साथियों जो प्रायोरिटी देते हैं वही होता है मर्डर, आत्महत्या, ये सबको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। और हमारे नेपाल में खास करके इससे भी ज्यादा राजनीतिक, पॉलिटिक्स का समाचार ज्यादा प्रायोरिटी वहां पे दिया जा रहा है, यानी कि शांति का पत्रकारिता अभ्यास भी शुरू नहीं हो पा रहा है। इसको अभ्यास में शुरू करना जरूरी हमको लग रहा है। और खास करके हम एक आलू का उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आए, शाम का टाइम हो, उस टाइम में कोई सब्जी ना मिले तो हम लोग अपना गेस्ट को खास करके आलू का बहुत परिकार बनता है, उसी परिकार बना करके उनको खिलाते हैं। आवश्यकता जैसा हो वैसा करना पड़ता है। तो कोई भी समाज में कहीं पर भी कोई घटना घट जाए तो पत्रकार उस घटना को प्रायोरिटी देता है। उस समय में कोई जैसे सबसे बड़ा द्वंद हमको क्या लग रहा है, आंतरिक रूप से जो हम अध्ययन किए हैं, हम लोग द्वंद का चपेटा में पड़े हुए हैं। हम लोग शांति से ज्यादा द्वंद पत्रकारिता को प्रायोरिटी देते आ रहे हैं। देखा जाए भारत में क्या है, उतना नजदीक से हम देखे नहीं है, मगर हमारे नेपाल में क्या है, एक नेता दूसरे पार्टी का नेता को गाली करे तो वो हेडिंग बनता है, हेडलाइन बनता है। तो उससे द्वंद कमजोर नहीं, द्वंद और फैलते जाएगा और शांति वहां कदापि नहीं आ सकता है, क्योंकि जिसको गाली किया वो नेता भी उसको गाली करता है, वो भी हेडलाइन बनता है। हमको लगता है भारत में थोड़ा थोड़ा ये कम हो गया है। हम जो आलू का उदाहरण दिए, खास करके शांति और सद्भाव के लिए पत्रकार को अपना कोड ऑफ कंडक्ट में रहना ही चाहिए। हम लोग का नेपाल में भी 16 बुंदा का कोड ऑफ कंडक्ट है पत्रकारिता का, और आप लोग का भारत में भी कोड ऑफ कंडक्ट है। इसके भीतर रह करके हम लोग पत्रकारिता करें तो निश्चित रूप से शांति पत्रकारिता हो सकता है। हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट को नांग करके बाहर चले जाते हैं, न्यायाधीश भी खुद बन जाते हैं, पुलिस भी खुद बन जाते हैं। पत्रकारिता का ये धर्म नहीं है। इस अपना धर्म को समझना चाहिए, अपना धर्म को अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। और हमारा जो संबंध है नेपाल और भारत का, खास करके सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, एक ही रहने वाला, एक समग्र विश्व में दो ही देश है, वो है नेपाल और भारत का संबंध। ये संबंध आज का नहीं है, त्रेता युग से चलते आ रहा संबंध है। इस संबंध को और मजबूत बनाना हम लोग का जरूरी है। हम विषय में आऊंगा, थोड़ा ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे नेपाल और भारत के राजनीतिज्ञ सब बच गया है, तो अब थोड़ा निष्कर्ष में आना चाहूंगा। निष्कर्ष में खास करके नेपाल और भारत है, वहां का जो हमारा संबंध है उसमें हमारे दो देश का जो सरकार कोई द्वंद करे, कोई युद्ध का उद्घोष करे, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम दोनों देश का पत्रकार को क्या करना चाहिए, ये द्वंद को कैसे निपटना चाहिए। जैसे आलू का परिकार हम कोई अपना मनमानी बना लेते हैं, अपना तरीका से बना लेते हैं, उसी समय में आलू का परिकार रूपी पत्रकारिता द्वंद को निपटाने के लिए करना चाहिए। ये धारणा रखते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रवण कुमार जी। अभी मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर मीनांती बेहरा जी, आप चेयरपर्सन ओडिशा स्टेट कमिश्नर वुमन भुवनेश्वर से पधारी हैं। आपने महिला एवं बाल विकास विभाग ओडिशा में अपनी सेवाएं दी। आप स्टेट एडवाइजरी बोर्ड SC ST OBS विकास विभाग में बतौर सदस्य रही हैं। आप स्टेट एडवाइजरी कमेटी में भी सदस्य रही और इसी वर्ष आपको दादा साहेब फाल्के आइकॉन नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहन मीनांती बेहरा जी,
ओम शांति, नमस्कार। आज का टॉपिक है पीस जर्नलिज्म फॉर ग्लोबल हार्मनी, अर्थात वैश्विक सद्भाव के लिए शांति में पत्रकारिता। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन थे ब्रदर बीके ब्रिज मोहन, इसके साथ उपस्थित है तुषार प्रभु ने, प्रोफेसर शाहन मैडम, बीके सूर्य ब्रदर, स्वर्ण कुमार देव, बीके उर्मिला, ललिता शेहत, अजय फरवाज, चित्तरंजन मिश्रा एंड कुंजन आचार्य। इसके साथ मेरे सामने बैठे हुए सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप मुझे ये अवसर दिया आज प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनने के लिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक और गणतांत्रिक राष्ट्र में आम आदमी और जनरल पीपुल का मत को लेकर सरकार तक आप रखते हैं। तो आप सब जनमत को संवाद पत्र में प्रकाश करते हैं, इसलिए गणतांत्रिक का फोर्थ पिलर अर्थात संवाद पत्र है। आम आदमी का प्रॉब्लम को, विश्व और देश का समस्या को आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में प्रकाश करते हैं। इसके लिए आयु बनता है, समस्या समाधान होता है, इसलिए पत्रकार को निर्भीक से काम करना चाहिए। आज समग्र देश में बहुत समस्या बढ़ चुका है, विश्ववासी दुख, अशांति, हिंसा, दोष, स्पेशली वुमेन इश्यू, वुमेन हरासमेंट, ये सब बहुत बढ़ चुका है। इस सभी वातावरण से उभरने के लिए पत्रकारों का इम्पोर्टेंट रोल है। जब पत्रकार एक मिशन के ऊपर में काम करता है, इस कार्य को संपन्न न करके छोड़ता है, इसलिए आप सभी निर्भीक से काम कर रहे हैं। विदाउट प्रेशर में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। सत्य को प्रकाश करके पीड़िता को न्याय देने के लिए काम आप सब करते हैं। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, इस क्षेत्र में सेंसिटिव इश्यू को प्रॉपरली डील करने के लिए आप सबका बहुत सहयोग है। सारा भारतवर्ष में ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन सबसे ज्यादा 100 केस टेकअप किया है। इस सफलता को मैं ओडिशा मीडिया पर्सन को देना चाहती हूँ, क्योंकि ओडिशा में पत्रकार में इतना सजाग है, जब कौन सी प्लेस में प्रॉब्लम होता है वो इमीडिएट कमीशन को देते हैं, उनका ड्यूटी निभाते हैं। आज हम एक सेकेंड में कोई घटना देखते हैं, समाज में कोई घटना घटते हैं, तो पूरा विश्व में वही घटना फैल जाता है। अर्थात मीडिया इतना पावरफुल टूल है, जो चाहे वो कर सकता है। अतीत में ऐसा घटना है, मीडिया पर्सन अपना लाइव को बाजी लगाकर अक्रांत प्रेस को जाकर संवाद प्रकाश किए हैं, जिसके लिए विक्टिम को न्याय मिलता है। आज समय की मांग है, पूरा विश्व में तनाव है, अशांति है। ऐसे समय में पत्रकार बंधु ये संकल्प ले कि हम पत्रकारिता में सकारात्मक शांतिपूर्ण वातावरण लाने के लिए टायरलेस प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ निश्चित रूप से पूरा विश्व में शांति स्थापन करने के लिए आप सबका बड़ा सहायक है। आप ऐसे काम करिए और शांतिपूर्ण वातावरण लाने के लिए आपका लेखन उन चलाई रखने हैं। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन मीनांती बेहरा जी। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स में ही प्रोफेसर डॉक्टर सारा नरसिंह जी से। आप रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लिस्ट बहुत ही लंबी है। आपने MBA, LLB, PhD, PG डिप्लोमा, डिस्टेंस एजुकेशन, MA इन एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स, बहुत सारी उर्दू अवैरिक लैंग्वेज। आपने अनेक विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों पर सुशोभित रही हैं। तो अभी आपसे अनुरोध है, अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखेंगी।
थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड माय मीडिया पर्सन्स। द टॉपिक व्हिच आई हैव बीन गिवन और आई हैव सेलेक्टेड इज एम्पावरिंग सिटीजंस थ्रू पीस जर्नलिज्म, अ पाथवे टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। Can I have a PPT, please? Or you can just play it from there. You can play it from there. तो कहीं भी कहते हैं कि जो बुलावा आता है हम अपने आप नहीं पहुंचते, जब बुलावा आएगा तभी आप पहुंचेंगे। 2011 में हम लोगों ने डिसाइड किया था, हमारी फैमिली ने, कि हम लोग जाएंगे। बेटे का वो उसने पायलट का एक एंट्रेंस पास किया था और हम रायबरेली जा रहे थे। अब वहां से हमारा एक ये प्लान था कि हम लोग माउंट आबू भी आएंगे, मगर शायद उस वक्त
ये हमारा बुलावा नहीं था, हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया, हम बीच में रह गए, हमें अपनी गाड़ी छोड़ करके फिर वहां से लखनऊ में ही छोड़ना पड़ा और हम लोग माउंट आबू नहीं पहुंच पाए। मगर आज जब आए तो इतने सम्मान से लोगों ने हमें बुलाया, शायद यही एक होता है जो मिरेकल कहते हैं या एक कहें की संभावना होती है कि जिसमें हम जहां जाना चाहते हैं जब वक्त होता है तभी हम वहां पहुंच पाते हैं। आज हम यहां आए सन 2011 से आज 12 साल के बाद इस संस्था में जब मैं आई तो ये जो प्यार मुझे मिला जहां से अबू रोड स्टेशन से लेकर के यहां तक जो मुझे प्यार मिला और मुझे जो इतना आदर सम्मान सब कुछ मिला शायद यही था, यही ऊपर वाले को मंजूर था जिसके लिए मैं अपने ब्रह्म कुमारी संगठन के हर इंसान से को जो भी ये इनसे संबंधित है उन सबको मेरा नमस्कार है और मेरा आभार है और मेरा प्यार है। आज की जो टॉपिक है उसमें लगा कि मुझे क्या 7 मिनट में मैं क्या बोल पाऊंगी, मगर मुझे इस बारे में भी है कि क्या बोलूं। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग खुद समझदार हैं और खुद ही इसमें प्रैक्टिकली आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो पीस जर्नलिज्म के बारे में एज अ थ्योरेटिकल बोलना या कुछ करना तो ये एक मैं एक स्टोरी से मुझे लगा रात मुझे एक ध्यान आया एक स्टोरी। एक बहुत ही मासूम सा जानवर है, बहुत मेहनती जानवर है, मैं उस स्टोरी से शुरू करती हूँ। वो एक डोंकी की कहानी है, एक गधे की कहानी है जो इतना मेहनत करता है, बहुत अहम है। वो एक पेड़ से बंधा था बेचारा परेशान, एक शैतान उधर से गुजरता है और वो पूछा उसने उस गधे से कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे खोल दो, मुझे आजादी चाहिए। शैतान ने उसे खोल दिया। अब वो भूखा प्यासा जो गधा था वो खेत में नेचुरल है कि वो खेत की तरफ भागा। उसने पूरी तहस नहस कर दी उस खेत की जो उसके सामने पड़ा और उस जिससे उस फार्मर जो भी फार्मर था जो किसान था उसकी वाइफ ने उसको देखा और उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने पति से कहा कि वो जाकर के उस डोंकी वाले को कुछ पता लिख करे जो भी करे। अब उसने वो जो फार्मर की वाइफ का हस्बैंड जो फार्मर था वो जाकर डोंकी ओनर को मार के आया। अब इस दोनों परिवार में एक वैमनस्यता शुरू हो गई, एक दूसरे का घर जलाना, एक दूसरे के परिवार वालों को मारना, ये सब एक तरह से चलता रहा। लास्ट में वो जो फार्मर था जो लैंड वो डोंकी ओनर था वो बच गया। वो बोला जब उस शैतान से उसकी मुलाकात हुई, वो बहुत रो रहा था और उसे जब उस शैतान से उसकी मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि आपने ये क्यों किया। शैतान ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उस गधे की इच्छा पूरी की, मैंने उसको खोल दिया, बाकी सारा काम तो आप लोगों ने किया। वो जो वैमनस्यता है आगे बढ़ने की, कंपटीशन, ईगो, सारा कुछ तो वो आपके अंदर था जिसको आपने उजागर कर दिया और ये सारा जो विनाश आप देख रहे हैं अपने चारों ओर उसकी वजह से ही है। मेरा कोई काम नहीं था, मैंने तो एक सिर्फ उसको आजाद किया था जो उसके लिए भला था, बाकी सी जो चीजें हैं वो आपके अंदर हैं। तो हम लोग जो शांति की बातें करते हैं, हम लोग जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या एक कंपटीशन के ऊपर जो जाने की बात करते हैं और जिसकी वजह से शायद वो जो एक मीडिया का जो काम है जो धैर्य के साथ करना या उन्हें यहाँ पे हम लोग पीस पत्रकारिता या पीस जर्नलिज्म की बात करते हैं वो यही आती है। इसमें ही जरूरी है कि हम उस चीज को ध्यान में रखें कि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो हम कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं वो कितने पॉजिटिव हैं। कहीं हम अपने कंपटीशन के दौड़ में, अपने ईगो के दौड़ में कहीं हम उस विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा पीपीटी मैं चाहूंगी कि आप लोगों को दिखाऊं, हालांकि ये बड़ा थ्योरेटिकल सा है मगर ये प्रेजेंटेशन दिस एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस जर्नलिज्म एंड इट्स पोटेंशियल टू एम्पावर सिटीजंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। We will discuss the principles of peace journalism, its role in promoting dialogue and understanding, and the importance of citizen participation. Join us on this journey towards a more peaceful world. Peace journalism, if we talk about it, is a form of journalism that aims to promote understanding and dialogue by focusing on solutions rather than conflicts. अभी आगे के वक्ताओं ने भी उसकी बात की थी कि हम लोग उसके उसको उपाय नहीं दे रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं लेकर के आ रहे हैं. हम सिर्फ जो भी चीज देखते हैं ये तो कहते हैं कि यही हमारी रिपोर्टिंग है, हमें उसे हमने जो देखा वो रिपोर्ट किया, मगर उसके समाधान की ओर या उसके को किस तरह से पॉजिटिवली प्रेजेंट कर सकते थे जो आगे और ज्यादा विनाश ना करे, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में और एक बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल पीस वो नहीं कर पाते, उनको हमें ध्यान में रखना होगा. तो पीस जर्नलिज्म के की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, अवॉइडिंग सेंसेशनलिज्म, ह्यूमनाइजिंग स्टोरीज, प्रमोटिंग डायलॉग, एथिकल कंसिडरेशंस. एथिकल कंसिडरेशंस पे तो ज्यादा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम उस बात से ही अड़े हैं कि हम आगे बढ़ना है, मगर जहां पे एथिक्स की बात आती है तो वो हमें उस सॉल्यूशन की ओर भी लेकर के जाएगी. द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस जर्नलिज्म इंक्लूड्स एक्यूरेसी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, इंक्लूसिविटी एंड सॉल्यूशंस ओरिएंटेशन. इट आल्सो इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज दैट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी. अभी हमारे न्यूज चैनल्स में या जो भी हम सुनते हैं मीडिया में, एक नॉइज की बात जो हम लोग कर रहे थे वही है. वहां पर हम एम्पैथी भी नहीं शो करते, हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता. जितना हल्ला हम मचा सकते हैं वो हम मचाते हैं, चाहे वो हमारे टॉक शोज में हो या कोई डिस्कशन फोरम में हो, कहीं पर भी हो. दीज प्रिंसिपल्स कैन गाइड जर्नलिस्ट एंड सिटीजन अलाइक इन द एफर्ट्स टू प्रमोट पीस. द रोल ऑफ पीस जर्नलिज्म इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये बहुत जरूरी है. बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल वॉइसेज एंड पर्सपेक्टिव्स, ये एक प्लेटफॉर्म है. ब्रह्म कुमारी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टॉक अबाउट पीस. पीस जर्नलिज्म एंड कैन हेल्प टू डी एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग. इट कैन ऑल्सो चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस एंड हाईलाइट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वायलेंस. थ्रू इट्स सॉल्यूशंस ओरिएंटेड अप्रोच इट कैन कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल पीस. Importance of citizen participation. Citizens can play a crucial role in promoting peace and conflict resolution. By engaging in dialogue and promoting understanding, they can challenge stereotypes and biases and contribute to the building of sustainable peace. Peace journalism can provide a platform for citizens' voices and perspectives and empower them to take an active in conflict resolution. I'll just like to conclude. Peace journalism has the potential to empower citizens and promote conflict resolution by focusing on solutions rather than conflicts. Its principles of accuracy, fairness, impartiality, inclusivity, and solutions orientation can guide journalists and citizens alike in their efforts to promote peace. By working together, we can create a more peaceful and just world. And lastly, I'll just end up दो लाइन से मैं एंड अप करना चाहूंगी कि जब भी हम अपनी कलम की बात करते हैं तो वो हथियार और औजार अपने पास रखें. जवाब हम तो जानते हैं, जो खंजर नहीं कलम से चोट करते हैं. पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज है कलम, जो न रुकनी चाहिए, न झुकनी चाहिए, न अटकनी चाहिए और न ही भटकनी चाहिए. ये वर्ड्स हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के, और शायद हम हर पत्रकार को, हर मीडिया पर्सन को अपनी कलम की ही ताकत से इस पीस के माहौल को इस दुनिया में लेकर के आना है, जिसका हम इस ब्रह्म कुमारी में आकर के जो शांति का सौगात हम लेकर यहाँ से जाएंगे, शायद वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे मानवता के लिए. थैंक यू.
बहुत बहुत धन्यवाद सारा नरसिंह बहन जी. अभी अनुरोध करती हूँ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता तुषार प्रभु ने जी, आप असिस्टेंट रेजिडेंशियल एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद से पधारे हैं.
आपने बहुत सारी सेवाएं दी हैं, पिछले 25-23 वर्षों से आपने जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारों में सेवाएं दी, एशियन एज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स में भी आप अपना सेवाएं दे चुकी हैं भ्राता तुषार प्रभु ने जी।
ओम शांति। मैं मेरे विचार इस मंच पे रखूं उससे पहले बहन पूनम जी को एक निवेदन है कि अगर बहुत लंबा हो रहा है तो आप घंटी बजा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे एक विनोद एक याद आ रहा है जो मैंने सुना था। राजनीति में एक सज्जन आए और उनको बोलने का इतना मौका नहीं मिल रहा था, तो ऐसी एक बड़ी सभा थी और उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया और वक्तव्य करते 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 उन्होंने देखा कि मोस्टली सारे लोग खर्राटे मार रहे सो गए। तो अचानक ही एकदम उनको एहसास हुआ कि भाई मैं बहुत बोल चुका हूं, और उन्होंने इमीडिएटली माफी मांगी और ये कहते हुए कि भाइयों और बहनों मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास घड़ी ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा बोल गया। तो ऑडियंस में से कोई था जिसको नींद नहीं आ रही होगी, इंसोमिया का पेशेंट, उसने बोला नेताजी आपके पास घड़ी नहीं तो कुछ नहीं, पीछे आपके कैलेंडर तो है ना, पूरा दिन बदल गया है। ये तो ठीक है, एक विनोद की बात है। मंच पर विराजमान सभी परम ज्ञानी मित्रों, मेरे व्यवसाय से जुड़े हुए पत्रकार मित्रों, ब्रह्म कुमारी संस्था का मैं बहुत ही ऋणी हूं कि मुझे उन्होंने दूसरी बार यहाँ पे मेरे विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और इस बार तो जो मेरा व्यवसाय है तो आपके साथ ही मुझे एक विचार गोष्ठी करने का मुझे एक मौका मिला। वैसे मैं अहमदाबाद से आते सोच रहा था, नोट्स प्रिपेयर कर रहा था कि मैं क्या बोलूंगा क्या है, लेकिन हम सब पत्रकार मित्र है, हम वी आर सेम फैमिली, सो अब मुझे सहजता से बोलने में मुझे बड़ी आसानी हो रही है। मेरा एक थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीदी ने दिया, लेकिन मैं खुद भी देना चाहूंगा सिर्फ एक लाइन में। मैं पत्रकार हूं और मैं खुश भी हूं। वर्तमान परिस्थिति में जो हम सब पत्रकार जितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, किस तरह की लाइफ है, ऑफिस एटमॉस्फेयर कैसा है, हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं खास इस पे मैं एम्फेसिस कर रहा हूं कि आई एम अ जर्नलिस्ट बट आई एम स्टिल हैप्पी एंड आई विल कंटिन्यू टू बी हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द सेम। आज का टॉपिक है पीस जर्नलिज्म। डॉक्टर आचार्य साहब ने अपने प्रेरक उद्बोधन में काफी सारे बातें की, दूसरे भी वक्ताओं ने काफी बातें की। इससे मैं कुछ विचार रखना चाहूंगा, पीस जर्नलिज्म या जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो, साइंस जो बहुत टाइप की जर्नलिज्म है, ये कोई पढ़ा नहीं सकता, ना मैं पढ़ सकता हूं ना कोई आपको पढ़ा सकता। ये एक तैरने जैसा है, आप पीएचडी हो जाए स्विमिंग में, लेकिन जब तक आप डुबकी नहीं मारेंगे तब तक आप स्विमिंग नहीं सीखेंगे। तो पीस जर्नलिज्म हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी सार मेरा ये मानना है कि हम काफी लोगों ने कभी वॉर्स वगैरह कवर किए नहीं है, तो इसका जो उद्भव है एक वॉर से हुआ था, जो 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ और उससे इसका। लेकिन हमें एज अ रिपोर्टर, एज जर्नलिस्ट, मैं एज जर्नलिस्ट ही बात कर रहा हूं कि मुझे आपको या जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पीस। अभी मैं इतना ये कुछ आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं या स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूं, या ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूं। पिछले एक साल में मुझे याद है कि कुछ तारीख ऐसी, कुछ डेट्स ऐसी है, और वो मुझे किस लिए याद रह गई है, क्योंकि उस दिन मुझे गुस्सा आया था। ये मेरे में एक चेंज एक आया है, हालांकि मन से कोई बोलता है तो अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं ऋणी हूं इस ब्रह्म कुमारी संस्थान का, जिसके मेडिटेशन से, राजयोग से आज मेरे में एक 360 डिग्री एक चेंज आया है। वही व्यवसाय है, वही न्यूज रूम है, वही लोग हैं और वही माहौल है, लेकिन आई हैव लर्न्ड व्हाट इज पीस। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमको पीस क्या है समझने की जरूरत है। पीस इज नॉट जस्ट कि एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष ना हो या वॉर ना हो, सिर्फ ये पीस नहीं है। पीस इज एक्चुअली अ इनर फीलिंग एंड अ विलिंगनेस। जर्नलिज्म जो भी पढ़े हैं वो एक स्टैंडर्ड एक सिलेबस में आता है, 5 W's and 1 H, कब, क्यों, कहां, कैसे। और उसमें आज मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि एक और W एक जोड़ने की जरूरत है, वो है विलिंगनेस। एंड दैट इज द विलिंगनेस टू एक्चुअली चेंज आर सेल्फ। इसमें मैं भी आ जाता हूं क्योंकि मैं आप ही के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। तो पीस जर्नलिज्म की बात की, मैं एक दो उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि किस तरह का न्यूज़पेपर्स का वर्ल्ड वॉर वन में, एक छोटा सा ही उदाहरण है, ऐसे काफी सारे उदाहरण है कि अमेरिकन अखबारों ने ऐसी खबर छापी कि जर्मन सैनिकों ने एक 2 साल के बच्चे के हाथ पांव काट दिए। बड़ी बिल्कुल झूठी खबर थी, आप में से बहुत से लोगों को इसने पढ़ा पता होगा। ये बेसिकली जर्मनी या हिटलर या उन सबके प्रति, मतलब जो भी डिक्टेटर्स थे उनके प्रति एक लोगों में एक गुस्सा आए, एक हेटरेड हो। और ये यहां तक नहीं रुके, थोड़े दिन बाद वही खबर छपी, बहुत घिनौनी है, और ये खबर छापी कि जिन सैनिकों ने उस बच्चे के हाथ पांव काटे थे वो हाथ पांव वो लोग पका के खा गए। तो ये है वॉर का, जब जो वॉर चल रही थी, अभी भी चल रही है, तो जर्नलिज्म किस प्रकार का था, अभी भी ऐसा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है कि एक भयंकर उदाहरण है कि किस हद तक वॉर जर्नलिज्म जा सकता है और हमें किस चीज से हम वी शुड बी यू नो केयरफुल अबाउट। आज हम जो मैंने पहले बात की कि आज हम पत्रकार, आज हम, आप में से काफी लोग एक टीम लीड करते होंगे, काफी सारे होंगे, अगर है तो प्लीज अपना हाथ ऊंचा कीजिए, आपके अंडर भी टीम काम करती हो, थैंक यू भाई साहब। तो आप कब पीस जर्नलिज्म के पीस के बारे में हम सोच सकते हैं कि हम खुद पीसफुल हो और सबसे ज्यादा हम खुद प्रसन्न हो तब। अब हैप्पीनेस क्या है, मतलब व्हाट इज हैप्पीनेस? कि हैप्पीनेस यही है कि आज हमारी वजह से किसी को दुख ना हो और हम खुद खुश रहें। क्या आप स्ट्रेस में, आप डिप्रेशन में और आप गुस्से में आप किसी को खुश रह सकते हैं? एक उदाहरण में देता हूं मैं। एक 5 साल का बच्चा था, 2-3 भाई बहन थे उसके, उसके पिताजी भयंकर शराबी, इतने शराबी की उनकी मौत हो गई, और उनकी माताजी थी तो बच्चों खाना बिल्कुल नहीं उनके घर। तो उसकी माँ क्या करती थी, रास्ते पे जो लोग आते जाते थे तो उनकी नकल करती थी और अपने बच्चों को हंसाती थी, और उस हंसने में वो बच्चे अपनी भूख भूल जाते थे और सो जाते थे। एक दिन वो माता को किसी रेस्टोरेंट होटल में मिमिक्री का उसको चांस मिला पैसे कमाने का, और एक दिन वो होटल में परफॉर्मेंस देते देते वो माता वो गिर गई, कोलैप्स हो गई, और जितने लोग थे सब एंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक्स ले रहे थे, और सब बोले कि अरे किसको लेके आए यार, ये हमारा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अपनी माता को स्टेज पे गिरा हुआ देख के वो बच्चे ने बोला कि आपको अगर एतराज ना हो तो मैं कुछ पेश करूं। हाँ ठीक है। तो उस बच्चे ने जितने लोग मंच पे थे उन सब की मिमिक्री की, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे हंसते हैं, वो कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है, और उसने अपनी माता की भी मिमिक्री की, वो कैसे खांसते खांसते कोलैप्स हो गई। उस बच्चे का परफॉर्मेंस देख के लोग ने इतनी ताली बजाई पैसों की बौछार की, और उस लड़के का नाम आप सब जानते हैं, वो है चार्ली चैपलिन। तो कहने का मतलब ये है कि इतने दुख में, ऐसी अवस्था में आज उसने लोगों को हंसाया है। उसने बोला है कि मैं बारिश होती है तभी मैं रोता हूं ताकि लोग मेरा आंसू ना देख पाए। तो थैंक यू। तो खैर ये मेरा यही उद्देश्य है कि एज जर्नलिस्ट हम खुद पहले पीस को समझे, हैप्पीनेस को समझे, और उसके बाद काफी सारे बातें हुई, एथिक्स की बात हुई, हम किस तरह रिपोर्टिंग कर सके ये वो तो हम सीख ही लेंगे, बट मेन हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने आप में परिवर्तन कैसे लाए, तो हम समाज में परिवर्तन बनने के हम काबिल बनेंगे, हम योग्य बनेंगे। काफी सारी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। शांति की बात चल रही, शांति की स्थापना करने के लिए पहले हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत। हमारी सोच जब शांत होगी, सकारात्मक होगी, तभी हम अपने विचारों को शांत कर कार्य को शांत कर सकेंगे, और तभी हम विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। जैसे पहले भी कहा, शांति पहले स्वयं हमारे अंदर चाहिए। जैसे वो शुरू में कहते, एक बार बचपन में हम कहानी सुना करते थे कि एक संत जी के पास एक बच्चे को लेके एक माता जी गई, कहती बच्चा बहुत चलाकी करता है, बहुत गुड़ खाता है। तो बच्चे को माता रोज समझाती थी, बेटा गुड़ नहीं खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। तो कहती कहना नहीं मानता, तो बच्चे को संत जी के पास लेके गई, बेटा संत जी की शायद बात मान लेंगे। तो संत जी ने कहा ठीक है, आप इस बच्चे को ना एक सप्ताह के बाद लेके आना। तो बच्चे को एक सप्ताह के बाद माता जी लेके गई। तो जब सप्ताह के बाद लेके गए तो संत जी ने बच्चे को कहा, बेटा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, दांत खराब होंगे, कीड़े लगेंगे, फिर दांत गिर जाएंगे, इसलिए गुड़ खाना, ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, कम खाओ लेकिन खाओ, लेकिन कम खाओ। बच्चे ने कहा ठीक है। तो माता जी ने कहा, संत जी, महात्मा जी, आपने यही बात कहनी थी एक सप्ताह पहले कह देते, अब जो कह रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, भी आप पहले क्यों नहीं कहा? महात्मा जी ने कहा, क्योंकि पहले मैं बहुत गुड़ खाता था इसलिए नहीं कहा, पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया इसलिए मैं बच्चे को कह रहा हूं। तो वही बात हम दूसरों को कहें, उससे पहले मुझे खुद को परिवर्तन करना है। शांति 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 की बात करें, शांति दूसरा स्थापन करे, पहले मुझे अपने विचारों में लेके आनी, अपने अंदर की शांति को जागृत करना है, अपने अंदर की शांति को खोजना है, अपने अंदर की शांति को जागृत कर शांति के सागर बाप की संतान बनकर उस शांति के सागर की शक्ति को जागृत कर स्वयं शांत रह, विचारों को शांत कर, फिर हम शांति की लहर में समाएंगे, शांति सागर की लहरों में समाएंगे। तो शांति की दुनिया स्थापन करने में हम जो भी कार्य स्थापन करेंगे तो शांत चित होकर करेंगे, वो वाक्य ही सकारात्मक होगा और सद्भावना सहित ही होगा। तो यही उम्मीद करते हुए मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ कि हम सब यही उद्देश्य लेकर के चलेंगे कि जो विषय लेके चले हैं उन सबका हम सबका यही योगदान रहेगा कि जो संकल्प लिया है उस संकल्प को सकारात्मक करने के लिए हम सबका योगदान रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारे मंचासीन वक्ताओं का ईश्वरीय सौगात शॉल और ईश्वरीय सौगात से सम्मान करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें।